आगे सबक देखिए भाई, फइन आदल मुर्तद्दु बादल हुक्म बिलिहाकिही बिदारिल हर्बी इला दारिल इस्लामी मुस्लिमन फमा वजदहू फी यदि वरसतिही मिन मालिही बिआइनिही अखदहू لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه وإذا عاد مسلما احتاج إليه فيقدم عليه. भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर मुर्तद का इर्तेदाद की हालत में इंतकाल हो जाए या उसको कत्ल कर दिया जाए तो उसने इस्लाम की हालत में जो कमाया था वो उसके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, और जो इसने इर्तिदाद की हालत में कमाया था वो माले फै है, और ये इमाम साहिब के नजदीक है. जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इसका सारा माल जो है वो इसके वारिसों की तरफ मुंतकिल होगा, चाहे उसने इस्लाम की हालत में कमाया है और चाहे इर्तिदाद की हालत में कमाया है. जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुर्तद का सारा माल जो है वो माले फै है, चाहे उसने इर्तिदाद की हालत में कमाया है और चाहे इस्लाम की हालत में. इसलिए क्योंकि मुर्तद जो है वो काफिर हरबी के दर्जे में है, और काफिर हरबी का सारा माल जो है माले फै होता है. मुसलमान जो है वो काफिर का वारिस नहीं बन सकता. तो मुर्तद जब काफिर हरबी है तो इसका सारा माल माले फै होगा. जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि मुर्तद का सारा माल जो है उसकी मिल्कियत है, लिहाजा वो वारिसों की तरह मुंतकिल होगा. वजह यह कि वो फरमाते हैं कि यह मुर्तद है, यह मुकल्लफ है और मोहताज है, और जो भी मुकल्लफ और मोहताज होता है वो अपने माल का मालिक होता है, तो लिहाजा इसका सारा माल इसका ममलूक है. और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जो जिक्र फरमाया था कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता, तो उसका जवाब देते हैं साहिबैन कि ये जो वरासत है इसकी निस्बत की जाएगी इर्तेदाद से पहले की तरफ, कि आयन जिस वक्त ये मुर्तद हो रहा था तो इस्लाम के अंदर जो इसकी जिंदगी का आखिरी जुज था उसको यूं समझा जाएगा कि ये इसकी जिंदगी का ही आखिरी जुज है, और इसके अंदर माल इसके मुसलमान वारिसों की तरह मुंतकिल होगा, तो मुसलमान जो है वो मुसलमान ही का वारिस बना, काफिर का वारिस नहीं बना. जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि मुर्तद का वो माल जो इसने इस्लाम की हालत में कमाया था उसकी निस्बत तो हो सकती है इर्तेदाद से पहले की तरफ, क्योंकि उस वक्त वो माल मौजूद है, लेकिन जो माल इसने इर्तेदाद के बाद कमाया है वो माल तो इर्तेदाद के वक्त मौजूद ही नहीं है, लिहाजा इर्तेदाद से माकबल की तरफ उसकी निस्बत भी नहीं हो सकती. जब उस माल की निस्बत इर्तेदाद से माकबल की तरफ नहीं हो सकती तो फिर वो माले फै होगा, और जो इस्लाम में कमाया है उस माल की निस्बत इर्तेदाद से पहले की तरफ हो सकती है, लिहाजा वो माले वरासत होगा भाई. और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि मुर्तद का वारिस कौन कौन होगा, तो बतलाया कि इस सिलसिले में इमाम साहिब से तीन रिवायतें हैं. एक रिवायत हसन इब्ने जियाद रहमहुल्ला की है, वो फरमाते हैं कि इमाम साहिब के नजदीक मुर्तद का वारिस वो मुसलमान होगा जो इर्तेदाद के वक्त भी वारिस बन रहा हो और मौत के वक्त भी वो जिंदा है और वारिस बन रहा है, तो वो वारिस बनेगा भाई. वजह यह कि मौत के वक्त इसने वारिस बनना है तो लिहाजा मौत के वक्त इस वारिस का होना जरूरी, और नीज इस वरासत की निस्बत जो है इर्तेदाद से पहले की तरफ की जाएगी, तो आयन इर्तेदाद के वक्त भी इस वारिस का मौजूद होना जरूरी है. जबकि दूसरी रिवायत इमाम साहिब से वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह नकल फरमाते हैं कि इमाम साहिब के नजदीक सिर्फ इर्तेदाद की हालत का एतबार है. जिस वक्त यह शख्स मुर्तद हुआ था उस वक्त वारिस का वारिस होना मोतबर है, क्योंकि इर्तेदाद मौत के दर्जे में है, तो उस वक्त जो वारिस मौजूद है वो ही वारिस बनेगा. और तीसरी रिवायत जो है वो इमाम मोहम्मद रहमला नकल फरमाते हैं इमाम साहिब से. इस रिवायत के मुताबिक मुर्तद की मौत का एतबार है, इर्तेदाद का एतबार नहीं. तो मौत के वक्त जो शख्स वारिस बन रहा है वो वारिस बनेगा, इर्तेदाद के वक्त का एतबार नहीं किया जाएगा. वजह यह है कि इर्तेदाद मौत का सबब है, और जो चीज सबब के मुनाकिद होने के बाद سبب کے تام ہونے سے پہلے پائی جائے، اس کو اسی طرح شمار کیا جاتا ہے جیسے وہ سبب سے پہلے ہی موجود تھی، جیسے ایک شخص کسی سے کوئی باندی وغیرہ خریدے لیکن قبضے سے پہلے ہی اس باندی نے ایک بچے کو جنم دے دیا، تو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بیع کے بعد اور قبضے سے پہلے پیدا ہوا ہے، یعنی مشتری کی ملکیت کا سبب منعقد تو ہو چکا ہے بیع کی وجہ سے لیکن ابھی تام نہیں ہوا کیونکہ مشتری نے قبضہ نہیں کیا، اور جو چیز سبب کے بعد پائی جائے لیکن سبب کے تام ہونے سے پہلے پائی جائے اس کو اسی طرح شمار کیا جاتا ہے جیسے وہ سبب سے پہلے ہی موجود تھی، تو یوں سمجھا جائے گا یہ بچہ بیع سے پہلے ہی موجود تھا اور اس باندی اور بچے دونوں کی بیع ہوئی ہے، لہذا اس بچے کے مقابلے میں بھی سمن آئیں گے، اگر بھائی یہ بچہ حوالے نہیں کرتا تو اسی کے بقدر سمن میں کمی ہو جائے گی، البتہ یہ بچہ مضمون نہیں ہے، یعنی اگر بھائی کے پاس یہ بچہ ویسے ہی ہلاک ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر بائے پر اس کا زمان نہیں آئے گا بھائی، تو یہاں پر بھی ارتداد کی وجہ سے موت کا سبب تو پایا گیا لیکن ابھی موت آئی نہیں، یہ سبب ابھی تام نہیں ہوا، تو اس سبب کے تام ہونے سے پہلے جو بھی وارث بن رہا ہو اس کو یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ ارتداد سے پہلے ہی وارث بن رہا تھا بھائی، اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ ارتداد مرض الموت کے درجے میں ہے، لہذا ارتداد کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن اس مرتد کی بیوی جو ہے وہ وارثہ بنے گی اگر عدت کے اندر اندر مرتد مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ مرتد رجل فار کے درجے میں ہوا اور رجل فار کی بیوی جو ہے وہ عدت کے اندر وارثہ بنتی ہے، تو اس مرتد کی بیوی بھی عدت کے اندر وارثہ بنے گی، اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر مرتد ہونے والی عورت ہے تو پھر اس صورت میں اگر یہ عورت مرض الموت میں مرتد ہوئی ہے تو پھر اس کا خاوند وارث بنے گا، اور یہ حکم استحسانن ہے، وجہ یہ کہ مرض الموت میں ارتداد سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عورت خاوند کے حق کو باطل کرنا چاہتی ہے، لہذا خاوند کے حق کو باطل نہیں کیا جائے گا بھائی، ہاں اگر وہ عورت جو مرتدہ ہوئی ہے وہ صحیح اور تندرست تھی پھر ارتداد کے بعد اس کا خاوند اس کا وارث نہیں بنے گا بھائی، اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر مرتد دار الحرب بھاگ گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دیا تو یہ بھی مرتد کے لیے موت حکمی ہے بھائی، لہذا اس کی وجہ سے بھی اس مرتد کے جو مدبر اور امہات اولاد ہیں وہ آزاد ہو جائیں گی، اس پر جو قرضے ہیں وہ فوری طور پر واجب الادا ہو جائیں گے، اور جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا وہ وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا بھائی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ارتداد کے بعد مرتد کا مال موقوف ہو گیا تھا تو دار الحرب جانے کے بعد بھی اس کا مال موقوف رہے گا، وارثوں کی طرح منتقل نہیں ہوگا بھائی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ مرتد جب دار الحرب چلا گیا تو دار الحرب والے مردوں کے حکم میں ہیں، جس طرح مردوں پر اسلامی احکام لازم نہیں کیے جا سکتے اسی طرح دار الحرب والوں پر بھی ہمیں ولایت حاصل نہیں ہے، ان پر بھی اسلامی احکام لازم نہیں کیے جا سکتے، تو دار الحرب والے مردوں کے حکم میں ہیں، اور جب یہ مرتد دار الحرب والوں سے جا ملا تو یہ بھی مردوں کے حکم میں ہو گیا، لہذا مردوں والے احکام جاری ہوں گے اور اس کا مال اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا بھائی، اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ مرتد پر جو قرضے واجب ہوئے ہیں امام صاحب کے نزدیک اس پر اسلام کی حالت میں جو قرضے لازم ہوئے تھے وہ اسی مال سے ادا کیے جائیں گے جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہے، اور جو قرضے اس پر ارتداد کی حالت میں لازم ہوئے ہیں وہ اسی مال سے ادا کیے جائیں گے جو اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے، اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ امام صاحب کی یہ روایت جو ہے امام زفر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، اور امام صاحب سے ہی سلسلے میں دوسری روایت جو ہے وہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مرتد پر جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی کی ابتدا اس مال سے کی جائے گی جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا، اگر اس کے ذریعے ادائیگی پوری نہ ہو سکی پھر ارتداد کے مال کو بھی ساتھ ملایا جائے گا بھائی، اور تیسری روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب سے نقل فرماتے ہیں कि मुर्तद के कर्जों की अदायगी की इब्तिदा उस माल से की जाएगी जो उसने इर्तेदाद की हालत में कमाया है, और अगर उसके जरिए अदायगी पूरी न हो सकी तो फिर वो माल जो उसने इस्लाम की हालत में कमाया है उसके जरिए भी अदायगी की जाएगी। और साहिब हिदाया ने इमाम साहब के हर कौल की वजह भी जिक्र फरमाई थी। पहला कौल इमाम साहब का जो इमाम जुफर हमला नकल फरमाते हैं वो ये है कि इस्लाम के कर्जे इस्लाम की कमाई से अदा होंगे और इर्तेदाद के कर्जे इर्तेदाद की कमाई से अदा होंगे, तो उसकी वजह जिक्र फरमाई थी कि जाहिर यही है कि इस्लाम के अंदर जो इसने कमाई की है इसका सबब वही कर्जे हैं जो इस्लाम की हालत में इस पर आए थे, तो जब यह कमाई उन कर्जों की वजह से है तो इस कमाई ही के जरिए वो कर्जे भी अदा किए जाएंगे। इसी तरह इर्तेदाद के अंदर जो इसने कमाई की है जाहिर यही है कि इसका सबब वही कर्जे हैं जो इस पर इर्तेदाद की हालत में आए हैं, तो इर्तेदाद की हालत की कमाई के जरिए ही वो कर्जे अदा किए जाएंगे जो इस पर इर्तेदाद की हालत में लाजिम हुए थे। और दूसरे कौल की वजह जिक्र फरमाई कि इब्तिदा इस्लाम की कमाई से की जाएगी, वजह यह कि इस्लाम की कमाई का यह मालिक है, यहां तक कि इसी के अंदर इसकी वरासत भी जारी होती है, और इस वरासत के जारी होने में शर्त यह है कि मरने वाला खुद जो है उसको इस माल की हाजत ना हो, यानी उसका कफन दफन भी कर दिया गया हो, उसके कर्जे भी अदा कर दिए गए हों, सुलुस के अंदर उसकी वसीयत भी नाफिज कर दी गई हो, उसके बाद वारिसों का हक आता है, तो लिहाजा यहां पर भी इस मुर्तद के हक को मुकदम किया जाएगा और पहले इसका देन वगैरह अदा किया जाएगा और फिर बाकी माल बचा तो वह वारिसों की तरह मुंतकिल होगा। और अगर इस्लाम की कमाई के जरिए कर्जों की पूरी अदायगी नहीं हो सकती तो फिर इर्तेदाद के माल के जरिए उसकी अदायगी की जाएगी। इस पर इश्काल होता है कि इर्तेदाद का माल तो आपने हमें बताया था वो माल फै है, वो तमाम मुसलमानों का हक है, तो फिर तमाम मुसलमानों के माल के जरिए इस मुर्तद के कर्जों की अदायगी कैसे की जा सकती है? तो उसका भी जवाब साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया था कि जिस तरह जब कोई जिम्मी मर जाए और उसका कोई वारिस नहीं है तो उसका सारा माल बैतुल माल में जमा होता है, यह माल मुसलमानों का है और उनकी मसलहत के कामों पर खर्च किया जाएगा, लेकिन अगर इस जिम्मी पर कोई कर्जे वगैरह थे तो उसी माल के जरिए अदा किए जाएंगे। तो देखो जिम्मी का यह माल तमाम मुसलमानों का हक है लेकिन फिर भी इसके जरिए उसके कर्जों को अदा किया जा रहा है। इसी तरह यहां पर भी मुर्तद की जो इर्तेदाद के अंदर कमाई है वह तमाम मुसलमानों का हक है लेकिन मुर्तद पर अगर कर्जे हैं तो उनकी अदायगी इस माल के जरिए की जाएगी भाई। और फिर तीसरे कौल की वजह जिक्र फरमाई थी। तीसरा कौल इमाम साहब का यह था कि मुर्तद के कर्जों की अदायगी की इब्तिदा जो है इर्तेदाद की कमाई से की जाएगी, और अगर उसके जरिए अदायगी न हो सकी फिर इस्लाम के माल को भी साथ मिलाया जाएगा भाई। तो उसकी वजह जिक्र की थी कि ये जो इस्लाम के अंदर माल कमाया है इसमें वारिसों का भी हक है और जो इर्तेदाद के अंदर माल कमाया है उसमें वारिसों का हक नहीं है, मालूम है वो खालिस मुर्तद का हक है, तो लिहाजा इस मुर्तद के कर्जों की अदायगी बेहतर यह है उसी माल से की जाए जो खालिस इसका हक है। हां अगर उसके जरिए अदायगी पूरी ना हो सके फिर उस माल के जरिए अदायगी की जाएगी जिसमें वारिसों का भी हक है भाई। बात समझ में आ गई। जबकि साहिबैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुर्तद के कर्जे जो हैं उसकी तमाम कमाइयों से अदा किए जाएंगे, चाहे उसने इस्लाम की हालत में वो माल कमाया है या चाहे इर्तेदाद की हालत में। वजह यह कि साहिबैन के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत अपने माल पर से मौकूफ नहीं होती, वो अब भी अपने तमाम माल का मालिक है, लिहाजा उसी के जरिए अदायगी की जाएगी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया था कि मुर्तद के तसर्रुफात जो हैं वो चार किस्म पर हैं। मुर्तद के कुछ तसर्रुफात बिल इत्तेफाक नाफिज हैं हमारे तीनों अइमा के नजदीक, जैसे उम्मे वलद बनाना और तलाक। मुर्तद की बांदी बच्चे को जन्म दे और मुर्तद कहे कि ये मेरा बच्चा है तो इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा और ये बांदी इसकी उम्मे वलद बन जाएगी, इस पर इमाम साहब के मजहब पर इश्काल होता है। साहिबैन पर तो कोई इश्काल नहीं क्योंकि साहिबैन के नजदीक इर्तेदाद के बावजूद ये बांदी अभी तक इसकी मिल्कियत में है और अपनी बांदी से जो औलाद पैदा हो तो उसका दावा सही है भाई। लेकिन इमाम साहब पर इश्काल होता है कि आपके नजदीक तो मुर्तद की मिल्कियत अपने माल से मौकूफ तौर पर खत्म हो चुकी है, तो फिर ये यहां इस बच्चे का नसब कैसे साबित हो सकता है और ये बांदी उम्मे वलद कैसे हो सकती है, हालांकि किसी बांदी को उम्मे वलद बनाने के लिए उसका मालिक होना जरूरी है। तो उसका जवाब दिया था इमाम साहब की तरफ से कि बांदी के उम्मे वलद बनाने के लिए हकीकत मिल्कियत की हाजत नहीं है, यानी हकीकतन इंसान ने बांदी का मालिक हो यह जरूरी नहीं है। जैसे देखो बाप अपने बेटे की बांदी से सोहबत करे और उसे औलाद पैदा हो और बाप कह दे ये मेरी औलाद है तो आप पढ़ चुके हैं नसब साबित हो जाएगा और यह बांदी बाप की उम्मे वलद बन जाएगी। मालूम हुआ बांदी के उम्मे वलद बनाने के लिए हकीकी मिल्कियत की हाजत नहीं, तो लिहाजा यहां पर भी उम्मे वलद जो है उसकी मिल्कियत अगरचे मौकूफ हो चुकी है लेकिन फिर भी उसकी जो बांदी थी मुर्तद का उसे उम्मे वलद बनाना सही होगा। और नीज इसी तरह मुर्तद की तलाक भी बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक नाफिज हो जाएगी। आप पढ़ चुके हैं कि खावंद अपनी बीवी को तलाक बाइन दे दे तो निकाह टूट गया लेकिन फिर भी इद्दत के अंदर निकाह के कुछ असरात बाकी हैं, लिहाजा अगर खावन मजीद तलाकें देगा इद्दत के दौरान तो वो भी वाके हो जाएंगी। भाई तो यहां पर भी जब वो शख्स मुर्तद हुआ तो निकाह टूट गया और वो औरत इद्दत गुजार रही है तो इद्दत के अंदर अगर ये मुर्तद तलाक देगा तो बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक ये तलाक वाके हो जाएगी। मालूम हुआ मुर्तद के कुछ तसर्रुफात हमारे तीनों अइमा के नजदीक नाफिज हैं। भाई इसी तरह मुर्तद के कुछ तसर्रुफात हमारे तीनों अइमा के नजदीक बातिल हैं, जैसे उसका निकाह करना। मुर्तद नया निकाह करता है इर्तिदाद की हालत में तो हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि उसका यह निकाह बातिल है क्योंकि निकाह की बुनियाद दीन पर है, क्योंकि मुसलमान का ही मुसलमान से निकाह हो सकता है लिहाजा उसका निकाह बातिल है। या इसी तरह मुर्तद जो है किसी जानवर को जिबा करता है तो जबीहा जो है उसकी बुनियाद भी इस्लाम पर है लिहाजा इसका जबीहा भी हराम है, जायज नहीं है। भाई जबकि मुर्तद के कुछ तसरुफात वो बिल इत्तेफाक मौकूफ हैं, जैसे अक़्द मुफावजा। मैंने आपको बतलाया था अक़्द मुफावजा जो है वो ये है कि दो आदमी आपस में शिरकत का अक़्द कर लेते हैं कि दोनों का माल बराबर है, मसलन एक के पास भी 20 दिरहम हैं और दूसरे के पास भी 20 दिरहम हैं और ये आपस में अक़्द मुफावजा कर लेते हैं कि मैं जो भी बेउ शिरा करूंगा उसमें जितना नफा हासिल होगा वो आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा। और दूसरा शख्स भी यही कहता है कि मैं जो भी काम करूं और जो नफा कमाऊंगा वो हम दोनों के दरमियान आधा आधा तकसीम होगा और हम दोनों एक दूसरे के जामिन भी होंगे और एक दूसरे के वकील भी होंगे। तो ये जो अक़्द-ए- मुफावजा है इसमें दोनों अपनी अपनी बेउशिरा वगैरह में मसरूफ हो जाते हैं लेकिन दोनों में से हर एक दूसरे का वकील भी है और दूसरे का जामिन भी है। मसलन एक शख्स जो भी बेउ शिरा करता है तो वो बेउ अपने लिए भी कर रहा है और अपने साथी के लिए भी, तो अपने लिए हुआ ये असील और दूसरे के लिए हुआ वकील। और नीज वो जो दूसरा शख्स है वो जामिन होता है इस बेउ के अंदर, लिहाजा जैसे इस अकद करने वाले से समन का मुतालबा हो सकता है इसी तरह समन का मुतालबा जमानत देने वाले से यानी दूसरे शख्स से भी हो सकता है। तो दोनों से माल का मुतालबा भी हो सकता है और दोनों हर बेउ शिरा में एक दूसरे के वकील भी होते हैं। तो अक़्द-ए- मुफावजा जो है उसकी बुनियाद बराबरी पर है, लिहाजा इसमें जरूरी है कि दोनों जो हैं माल दीन और तसरुफात के एतबार से बराबर हों, लिहाजा मुसलमान और काफिर में अक़्द-ए- मुफावजा नहीं हो सकता क्योंकि दीन एक नहीं है और नीज इसलिए क्योंकि तसरुफ में बराबरी नहीं। काफिर जो है वो तो खमर और खिंजीर के अंदर ब्याओशिरा कर सकता है लेकिन मुसलमान तो खमर और खिंजीर में ब्याओशिरा नहीं कर सकता। तो लिहाजा यह मुर्तद जो है इसने भी इस्लाम को छोड़ दिया है, लिहाजा यह भी किसी मुसलमान के साथ अक़्द-ए- मुफावजा करेगा तो वह मुफावजा मौकूफ रहेगा यहां तक कि वो मुर्तद मुसलमान हो जाए। तो वो अगर वो मुसलमान हो गया तो वो अक़्द-ए- मुफावजा जो मौकूफ था अब वो नाफिज हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और मुर्तद के चौथी किस्म के वो तसरुफात हैं जिनमें हमारे अइमा का आपस में इख्तिलाफ है, इमाम साहब के नजदीक उसके वो तसरुफात मौकूफ हैं और साहिबैन के नजदीक वो नाफिज हैं। और याद रखो ये वो तसरुफात हैं जिनके अंदर मिल्कियत का दखल होता है। साहिबैन के नजदीक मुर्तद जो है वो अपनी चीजों का मालिक है लिहाजा वो अपनी चीजों की बेउशिरा कर सकता है, अपने गुलाम और बांदी को आजाद कर सकता है, अपनी चीजों को रहन रखवा सकता है और अपनी चीज किसी को तोहफे में दे सकता है क्योंकि इन तमाम आकदों की बुनियाद जो है वो मिल्कियत पर है। जबकि इमाम साहब के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत मौकूफ हो चुकी है लिहाजा वो उसके ये तसरुफात मौकूफ रहेंगे, नाफिज नहीं होंगे क्योंकि इसकी बुनियाद मिल्कियत पर है। भाई चुनाचे साहिब हिदाया ने फिर साहिबैन की दलील जिक्र फरमाई थी कि कोई शख्स जो अकद करता है उसकी बुनियाद दो चीजों पर होती है, एक तो यह कि उस शख्स में अकद की अहलियत होनी चाहिए, वह आकिल बालिग होना चाहिए और दूसरा वो उस चीज का मालिक होना चाहिए। फिर ही वो तसारुफ कर सकता है। लिहाजा इस मुर्तद इसमें अहलियत भी है, यह आकिल बालिग है और नीज ये अपने माल का मालिक भी है, तो लिहाजा इसके सारे तसरुफात नाफिज हैं भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि यह मुर्तद जो है उस हरबी के दर्जे में है जो हमारे कब्जे में मगलूब हो, और ऐसा हरबी जो हमारे कब्जे में मगलूब हो उसकी मिल्कियत अपने माल पर से मौकूफ तरीके पर खत्म हो जाती है, क्योंकि इमाम की मर्जी है चाहे इस हरबी को कत्ल कर दे, चाहे इसे गुलाम बना ले, और चाहे इस पर एहसान करते हुए इसे वैसे ही छोड़ दे। तो लिहाजा इस हरबी की मिल्कियत मौकूफ है तो इसके तसरुफात भी मौकूफ रहेंगे, तो ये मुर्तद भी इसी हरबी की तरह है, लिहाजा इसकी मिल्कियत मौकूफ हो गई, और जब मिल्कियत मौकूफ हो गई तो इसके तसरुफात भी मौकूफ हो गए। और नी साहिबैन फरमाते थे कि मुर्तद के अंदर अहलियत है क्योंकि ये आकिल और बालिग है, तो उसका भी जवाब दिया कि जो मुर्तद और हरबी हैं इनकी इस्मत साकित हो चुकी है, यह मुबाहुद दम बन चुके हैं, और जब इस्मत साकित हो गई तो इनकी अहलियत में भी खलल आ गया, जब अहलियत में खलल आ गया तो इनके ब्याव शिरा वगैरह के अकद नाफिज नहीं होंगे बल्कि वह मौकूफ रहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स कत्ल का मुस्ताहिक हो गया है किसी जुर्म की वजह से, जैसे किसी जानी को रजम किया जाएगा या किसी कातिल को किसास में कत्ल किया जाएगा, तो वह भी कत्ल के मुस्ताहिक हो चुके हैं, लेकिन वह इस्मत के साकित होने की वजह से कत्ल के मुस्ताहिक नहीं हुए बल्कि वह जुर्म की वजह से कत्ल के मुस्ताहिक हुए हैं। लिहाजा मुर्तद में और वह शख्स जिसको रजम किया जाएगा या उससे किसास लिया जाएगा, दोनों में फर्क आ गया, क्योंकि मुर्तद जो है उसकी इस्मत साकित हो चुकी है और उसकी वजह से उसकी अहलियत में खलल आ गया, जबकि जो वो शख्स जिसको रजम किया जाएगा या किसास में कत्ल किया जाएगा उसकी इस्मत साकित नहीं हुई, लिहाजा उसकी अहलियत में कोई खलल नहीं आया, तो वो मौत तक अपने माल का मालिक है और उसमें वो तसरुफ कर सकता है, जबकि मुर्तद ऐसा नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं फइन आदल मुर्तद दुबादल हुक्म बिलहाकी बिदारिल हर्ब इला दारिल इस्लामी मुस्लिमा फमा वजदहू फी यदि वरसतिही मिम्मालिही बिआइनिही अखदहू। भाई सूरत मसला ये कि एक शख्स मुर्तद होकर दारुल हर्ब चला गया और काजी ने उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया, और आप जानते हैं कि काजी का यह फैसला उस मुर्तद के लिए मौत के हुक्म में है, यानी यह उसके लिए मौत हुक्मी है, तो उसका माल उसके वारिसों की तरह मुंतकिल हो गया। बाद में उस शख्स को अल्लाह ने दोबारा ईमान की तौफीक दी, वो दोबारा मुसलमान हुआ और वापस दारुल इस्लाम आ गया, तो इसका माल तो वारिसों की तरह मुंतकिल हो चुका है, तो क्या यह अपना माल वापस ले सकता है उनसे? तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि मुर्तद का वो माल जो बेआईनी ही मौजूद है अभी तक वारिसों के कब्जे में, तो मुर्तद वो वापस ले लेगा, लेकिन मुर्तद का वो माल जिस पर से वारिस अपनी मिल्कियत खत्म कर चुके हैं, मसलन वारिसों ने उस चीज को बेच दिया है आगे, या वारिसों ने किसी को तोहफे के तौर पर दे दिया है, या वारिसों ने कोई गुलाम या बांदी थे उनको आजाद कर दिया है, तो फिर इस सूरत के अंदर वो माल मुर्तद वापस नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि वारिसों का तसरुफ सही था, क्योंकि वारिसों के तसरुफ की बुनियाद, वारिसों के तसरुफ की बुनियाद काजी के फैसले पर थी, काजी ने इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला किया था और काजी का यह फैसला मौत के दर्जे में है, तो लिहाजा काजी के फैसले के बाद मुर्तद के वारिसों को विलायत हासिल हो गई थी उस माल वरासत में तसरुफ की, तो उन्होंने जब माल को आपस में तकसीम किया और फिर उसमें तसरुफ किया, तो उन्होंने ये जो तसरुफ किया है तो उनको इस तसरुफ की विलायत थी, तो उनके ये तसरुफ सही हो गए, लिहाजा वो माल जिनको इसके वारिस आगे बेच चुके हैं या उस पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर चुके हैं उनको मुर्तद वापस नहीं ले सकता, अलबत्ता जो माल अभी भी वारिसों के पास मौजूद है वो मुर्तद वापस ले सकता है। तो कहते हैं फइन आद अल मुर्तद, और अगर मुर्तद वापस लौट आया बाद अल हुक्म बिलहाकी बिदारिल हर्बी, दारुल हर्ब चले जाने के हुक्म के बाद कि काजी ने यह हुक्म लगा दिया इसके दारुल हर्ब जाने का, तो अगर वो मुर्तद वापस लौट आया इला दारिल इस्लामी दारुल इस्लाम में मुस्लिमन मुसलमान होकर फमा वजदहू फी यदि वरसती ही, तो वो जो पा ले अपने वारिसों के कब्जे में मिम मालिही बिआईनिही अपने माल को, अपने मुअय्यन माल को, मसलन इसकी गाड़ी थी वो एक वारिस के हिस्से में आई है और उसी के कब्जे में है, या इसकी गाय बैल वगैरह थे वो उसके एक वारिस के हिस्से में आए हैं और उसके पास अभी भी मौजूद हैं, या इसका एक मकान वगैरह है और वो एक वारिस के हिस्से में आया है और अभी भी मौजूद है, तो अगर इसका मुअय्यन माल अभी भी वारिसों के कब्जे में है तो वो उसको वापस ले सकता है। तो कहते हैं फमा वजदहु फि यदि वरसती ही, तो वो चीज जिसको ये अपने वारिसों के कब्जे में पा ले, मिन माले ही बेआईन ही, यानी अपने मुअय्यन माल को, अखजहु तो ये उसको ले लेगा, लिअन्न अलवारिस इन्नमा यखलु फीह लिस्तिग्नाइही। भाई वजह यह कि यह माल वारिसों की तरफ इसलिए मुंतकिल हो गया था क्योंकि काजी ने इस पर मौत का हुक्म लगा दिया था। जब इस पर मौत का हुक्म लगा दिया तो मालूम हुआ यह मुर्दा है और मुर्दा को तो माल की हाजत नहीं होती, लिहाजा इसलिए इसके वारिसों की तरफ यह माल मुंतकिल हो गया। लेकिन अब जब यह फिर वापस आ गया है तो मालूम हुआ इसको तो माल की हाजत है, इसको मालूम हुआ माल की हाजत है, लिहाजा ये अपने वारिसों पर मुकदम होगा और उस माल को वापस ले लेगा। तो कहते हैं लिअन नलवारिस इन नमा यखलुफुहु फीही, इसलिए क्योंकि इसका वारिस जो है इस माल के अंदर इसका खलीफा बना था, लिस्तिगनाई ही, इस मुर्तद के बेनियाज हो जाने की वजह से कि इसे माल की हाजत ना रही थी क्योंकि दारुल हर्ब चला गया था और इस पर मौत का हुक्म लगा दिया गया था। वह इदा आद मुस्लिमन, और जब यह मुसलमान होकर वापस आ गया, इहताज इलैही, तो यह अब फिर उस माल का मोहताज हो गया, फयुकद्दम अलैही, लिहाजा इस मुर्तद को वारिस पर कदम किया जाएगा और ये उस माल को ले लेगा। बेखिलाफी मा इदा अजा लहुल वारिसु अन मिल्की ही, बखिलाफ इसके कि वारिस ने अपनी मिल्कियत से उसको खत्म कर दिया, यानी अपनी मिल्कियत उस पर से खत्म कर दी, तो फिर इस सूरत में ये उस माल को वापस नहीं ले सकता। और याद रखना, चाहे वारिस ने ऐसा तसारुफ किया है जो फसख हो सकता है, जैसे बेउशिरा, आप जानते हैं बेउशिरा को फसख किया जा सकता है, या किसी को तोहफा दिया है, और हिबा को भी फसख किया जा सकता है, और बास तसरुफात वो हैं कि जिनको फसख नहीं किया जा सकता, मसलन वारिस के हिस्से में बांदी या गुलाम आया था और उसने गुलाम या बांदी को आजाद कर दिया, और आप जानते हैं एताक को फसख नहीं किया जा सकता। तो वारिस ने उस माल पर से अपनी मिल्कियत को खत्म कर दिया है, चाहे ऐसे सबब के जरिए मिल्कियत को खत्म किया हो जो फसख को कबूल करता है, चाहे वो फसख को कबूल नहीं करता, दोनों सूरतों में वो माल मुर्तद वापस नहीं ले सकता। तो कहते हैं बेखिलाफी मा ईदा अजा लहुल वारिसु, बखिलाफ इसके कि उस माल को वारिस ने खत्म कर दिया हो, अन मिल की ही, अपनी मिल्कियत से, यानी उस पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर दी है, वह बेखिलाफी उम्महात औलादी ही व मुदब्बरी ही, और बखिलाफ उस मुर्तद की उम्महात औलाद और उसके जो मुदब्बर हैं, मुर्तद की उम्महात औलाद और मुर्तद के जो मुदब्बर हैं, जब काजी ने इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया तो वो आजाद हो गए, तो वो भी वापस नहीं हो सकते। तो कहते हैं वह बेखिलाफी उम्महात औलादी ही व मुदब्बरी ही, और बखिलाफ उस मुर्तद की उम्महात औलाद और उसके जो मुदब्बर हैं, लिअन्न अल-क़ज़ा अक़द सहा, इसलिए क्योंकि काजी का यह फैसला तहकीक सहीह है, काजी का यह फैसला सही है। भाई अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए तो जैसे काजी हकीकतन उसको मौत दे सकता है, यानी उसे कत्ल करवा दे, इसी तरह काजी हुक्मन भी मौत दे सकता है जब यह दारुल हर्ब चला जाए। मालूम हुआ काजी जो है मुर्तद को हकीकतन भी मौत दे सकता है, यानी कत्ल करवा सकता है, और हुक्मन भी मौत दे सकता है। तो कहते हैं लिअन्न अल-क़ज़ा अक़द सहा, इसलिए क्योंकि काजी का फैसला तहकीक वो सहीह है, बिदलीलिन मुसहिहिन, एक ऐसी दलील की वजह से, मुसहिहिन, जो उस फैसले को सही कर रही है, एक ऐसी दलील जो काजी के फैसले को सहीह करार दे रही है, और वो दलील क्या है, इस मुर्तद का दारुल हर्ब चले जाना, मुर्तद का दारुल हर्ब चले जाना, ये दलील जो है काजी के फैसले को सही करार दे रही है कि काजी का इस पर ये फैसला सही है, यानी इस पर मौत हुक्मी सही है। तवज्जो है, और याद रखो ये जो आया ना, क्योंकि ये फैसला सही है एक दलील की वजह से कि वो दलील इस फैसले को सही करार दे रही है, इसका ताल्लुक माकबल में दोनों बातों से है। एक बात यह जिक्र की बेखिलाफ ही मा ईजा अजालहुल वारिसु अन मिल्की ही, और दूसरी बात यह जिक्र की वह बेखिलाफ ही उम्महात औलादी ही व मुदब्बरी ही, कि मुर्तद वापस आया तो जो इसका मुअय्यन माल वारिसों के पास मौजूद है वो वापस ले लेगा, बखिलाफ उस माल के जिससे वारिस अपनी मिल्कियत खत्म कर चुके हैं और बखिलाफ इसके मुदब्बर और उम्महात औलाद के कि ये जो है वो वापस नहीं ले सकता क्योंकि इनकी बुनियाद कजाए काजी पर है और कजाए काजी की बुनियाद एक दलील पर है जो उस कजाए काजी को सही करार दे रही है। यह माना है लि अनल कजा अकद सहा, इसलिए क्योंकि काजी का यह फैसला सही है, बि दलील इन मुसहिहिन, एक ऐसी दलील की वजह से जो इस फैसले को सही करार दे रही है, फला युन कजू, लिहाजा काजी के फैसले को नहीं तोड़ा जा सकता, वलाउ जा अ मुस्लिमन قبل ان يقضي القاضي بذلك। भाई दूसरी सूरत है, एक शख्स मुर्तद होकर दारुल हर्ब चला गया लेकिन काजी के फैसले से पहले ही यह मुसलमान होकर वापस आ गया, तो यूं समझेंगे गोया यह मुर्तद हुआ ही नहीं था, यह हमेशा से मुसलमान ही था, लिहाजा यह अभी भी अपने सारे माल का मालिक है और इसके मुदब्बर और उम्महात औलाद भी अभी आजाद नहीं है क्योंकि उन्होंने तो काजी के फैसले से आजाद होना था और अभी तक तो काजी का फैसला आया ही नहीं था कि ये वापस आ गया। भाई तो कहते हैं वलाउ जा मुस्लिमन कबल अन यक्जी अल काजी बिजाली का, और अगर ये मुसलमान होकर वापस आ गया कबल इसके के काजी इसका फैसला करता, फकअन्नहु लम यजल मुस्लिमन, तो गोया कि ये हमेशा से मुसलमान ही है, लिमा जकरना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया, पीछे जिक्र किया था, इमाम साहब के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत अपने माल पर मौकूफ तरीके पर खत्म होती है, अगर ये फिर मुसलमान हो गया तो मिल्कियत बाकी रहेगी और यूं शुमार करेंगे कि गोया ये मुर्तद हुआ ही नहीं था, हमेशा से मुसलमान था, लेकिन अगर ये दारुल हर्ब चला गया है तो फिर भी मिल्कियत मौकूफ है। हां, जब काजी इसके दारुल हर्ब चले जाने का फैसला कर देगा तो अब इसका कुफर और इर्तेदाद साबित हो जाएगा, अभी तक इसका कुफर और इर्तेदाद साबित नहीं था, लेकिन जब काजी फैसला कर देता है फिर मुर्तद का कुफर और इर्तेदाद साबित हो जाता है। तो यहां पर भी काजी के फैसले से पहले अगर वो वापस आ गया मुसलमान होकर तो गोया हमेशा से ही मुसलमान था क्योंकि अभी तक काजी का फैसला ही नहीं आया, काजी का फैसला आता तो इसका इर्तेदाद भी साबित होता। भाई तो ये माना है फकअन्नहु लम यज़ल मुस्लिमा, तो गोया कि ये हमेशा से मुसलमान ही था, लिमा ज़करना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि मुर्तद का इर्तेदाद काजी के फैसले से साबित होता है। भाई आगे देखिए वह इदावती अल मुर्तद दुजारियतन नसरानियतन कानत लहू फी हालतिल इस्लाम। भाई सूरत है मसला ये, एक शख्स मुर्तद हो गया है और उसके इर्तेदाद के 6 माह या 6 माह से ज्यादा के बाद उसकी बांदी ने बच्चे को जन्म दिया है और मुर्तद जो है इस बच्चे के नसब का दावा करता है कि ये मेरा बच्चा है, तो याद रखो इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा, यह बच्चा जो है मुर्तद का बच्चा शुमार होगा और नीज यह बच्चा आजाद शुमार होगा क्योंकि मुर्तद आजाद है तो बच्चा भी आजाद होगा। बात समझ में आ गई। अलबत्ता यह बच्चा इस मुर्तद का वारिस बनेगा या नहीं इसके अंदर इसकी उस मां को यानी उस बांदी को देखा जाएगा, अगर वह बांदी ईसाई है तो यह बच्चा मुर्तद का वारिस नहीं बनेगा, अगर मां ईसाई है यानी जिम्मिया है और उसने बच्चे को जन्म दिया है तो इस सूरत में मां जो है वो जिम्मिया है और बाप मुर्तद है, और आप पढ़ चुके हैं कि बच्चा जो है वो अपने वालिदैन में से जिसका दीन बेहतर हो उसके ताबिया होता है, और यहां पर याद रखो मुर्तद का दीन बेहतर है उस जिम्मिया के मुकाबले में, मुर्तद का दीन बेहतर है। भाई किस एतबार से मुर्तद का दीन बेहतर है? कहते हैं भाई एतबार मुर्तद का दीन बेहतर है कि मुर्तद इस्लाम के ज्यादा करीब है, मुर्तद को मजबूर किया जाएगा कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे अगर तुम मुसलमान ना हुए, तो मुर्तद को मजबूर किया जाएगा इस्लाम के लिए तो वह इस्लाम के करीब है, जबकि जिम्मिया जो है उसको तो हम मजबूर नहीं कर सकते, जिम्मियों के तो मजहबी मामलात में हम दखल नहीं दे सकते। तो मालूम हुआ यह बच्चा जिसकी मां जिम्मिया है और बाप मुर्तद है यह भी मुर्तद ही शुमार होगा अपने बाप के ताबे होकर, क्योंकि बाप का मजहब मां के मजहब के मुकाबले में इस्लाम के ज्यादा करीब है। बाप को हम इस्लाम के लिए मजबूर कर सकते हैं, उसकी मां को इस्लाम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो मालूम हुआ इनमें से बाप का दीन बेहतर है और बाप मुर्तद है तो यह बच्चा भी मुर्तद शुमार होगा। और याद रखो मुर्तद का वारिस मुसलमान तो हो सकता है, मुर्तद जो है वह मुर्तद का वारिस नहीं हो सकता, लिहाजा यह बच्चा मुर्तद का वारिस नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी मां जो है वो जिम्मियां बांधी है। अलबत्ता ये बच्चा आजाद ही शुमार होगा क्योंकि मुर्तद ने इस बच्चे के नसब का दावा किया है। लेकिन इसके बरक्स अगर ये मुर्तद की जो बांदी है ये मुसलमान है और उसने इस इर्तिदाद के 6 माह या इससे ज्यादा के बाद बच्चे को जन्म दिया है, यानी इतनी मुद्दत है कि जिसके अंदर इर्तिदाद के बाद भी हमल ठहर कर सही सलामत बच्चे की पैदाइश हो सकती है, फिर भी मुर्तद अगर इस बच्चे के नसब का दावा करेगा तो नसब साबित हो जाएगा। तवज्जो है, आपके जहन में एक इश्काल आएगा कि जब इर्तेदाद को 6 महीने गुजर चुके हैं या 6 महीने से भी ज्यादा गुजर चुके हैं तो इसका तो मतलब है कि यह हमल इर्तेदाद के बाद ठहरा है, इर्तेदाद के बाद ठहरा है, और इर्तेदाद के वक्त तो मुर्तद की मिल्कियत अपने माल पर से खत्म हो गई थी, तो यह बांदी पर से भी इसकी मिल्कियत खत्म, चाहे यह बांदी जिम्मिया है चाहे मुसलमान है, तो फिर यह उसकी उम्मे वलद कैसे बन सकती है? तवज्जो है, बांदी तो वो ही उम्मे वलद बनती है जिसके अंदर इंसान की मिल्कियत हो, और इसके अंदर तो मुर्तद की मिल्कियत खत्म हो चुकी है। तो उसका जवाब जो है गुज़श्ता सबक में गुजरा था कि उम्मे वलद बनाना यह हकीकत मिल्कियत का मोहताज नहीं है। जैसे बाप अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर ले और वो बच्चे को जन्म दे और बाप का ये मेरा बच्चा है तो ये बाप की उम्मे वलद बन जाएगी, मालूम हुआ उम्मे वलद बनाने के लिए हकीकतन मिल्कियत का होना जरूरी नहीं है। भाई तो बात चल रही थी कि मुर्तद की मुसलमान बांदी है और उसने इस मुर्तद के इर्तेदाद के 6 माह या इससे ज्यादा के बाद एक बच्चे को जन्म दिया और मुर्तद ने इसका दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो इस सूरत में ये बांदी इसकी उम्मे वलद हो जाएगी, इस बच्चे का नसब भी साबित हो जाएगा जैसे ईसाई बांदी के अंदर था, और ये बच्चा मुर्तद का वारिस बने। ईसाई बांदी से होने वाला बच्चा तो मुर्तद का वारिस नहीं बनेगा क्योंकि वो बच्चा भी मुर्तद शुमार होगा और मुर्तद जो है वो मुर्तद का वारिस नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर बांदी मुसलमान है और बाप जो है वो मुर्तद है, और आप पढ़ चुके हैं कि बच्चे के वालदैन में से जिसका दीन बेहतर हो बच्चा उसके ताबिया होता है, तो मुसलमान बांदी का दीन बेहतर है तो बच्चा भी मुसलमान शुमार होगा और मुसलमान बच्चा जो है वो तो मुर्तद का वारिस हो सकता है। सूरत समझ में आ गई? देखिए भाई, कहते हैं वह इदा वती अल मुर्तद दुजारियतन नसरानियतन, और जब वती कर ली मुर्तद ने अपनी ऐसी ईसाई बांदी से, कानत लहू फी हालत इस्लामी, जो इसकी थी इस्लाम की हालत में, मुर्तद ने अपनी ऐसी ईसाई बांदी से सोहबत कर ली जो इस्लाम की हालत में इसकी ममलूका थी, फजा अदबी वलदिन ली अक्सरा मिन सित्तती अशहूरिन, फजा अदबी वलदिन, तो वो बांदी एक बच्चा ले आई यानी उसने बच्चे को जन्म दिया, लि अक्सरा मिन सित्तती अशहूरिन मुंजुर तद्दा, 6 माह से ज्यादा के अंदर जब से ये मुर्तद हुआ है, इस मुर्तद के इर्तेदाद के कम अज कम 6 माह बाद उसने बच्चे को जन्म दिया, यानी इतना वक्त है जिसमें हमल ठहर कर एक सही सलामत बच्चे की पैदाइश हो सकती है। तो कहते हैं फजा अदबी वलदिन ली अक्सरा मिन सित्तती अशहूरिन मुंजुर तद्दा, तो ये बांदी एक बच्चे को ले आई जब से ये मुर्तद हुआ है उसके 6 माह से ज्यादा के बाद, फद्दआहु, मुर्तद ने इस बच्चे का दावा कर दिया, फहिया उम्मु वलदिन लहू, तो ये बांदी जो है उस मुर्तद की उम्मे वलद होगी, वल वलद हुर्रुन, और बच्चा आजाद होगा, वहुआ बनुहू, और ये बच्चा उस मुर्तद का बेटा शुमार होगा क्योंकि नसब साबित हो चुका है। तो कहते हैं वह हुआ बनू हूं, और यह बच्चा जो है मुर्तद का बेटा होगा, वला यरिसु हूं, और यह बच्चा उस मुर्तद का वारिस नहीं बनेगा क्योंकि बच्चा भी मुर्तद ही शुमार होगा। भाई वह इनकान अतिल जारियत मुस्लिमतन, और अगर मुर्तद की बांदी मुसलमान थी, वरिसा हुली बनो, मुर्तद का यह बेटा जो है इस मुर्तद का वारिस बनेगा, इन माता अल रिद्दति औ लहक बिदार हरबी, अगर मुर्तद जो है इर्तेदाद पर ही मर गया, औ लहक बिदार हरबी, या दारुल हर्ब से जा मिला, यानी चाहे मुर्तद पर हकीकी मौत आई चाहे हुक्मी मौत आई, दोनों सूरतों में उसका यह मुसलमान बेटा इसका वारिस बनेगा। बात समझ में आ गई भाई? यहां तक सारा मतन था, और इसमें देखो बच्चे की पैदाइश हुई है इर्तेदाद के 6 माह या इससे भी ज्यादा मुद्दत के बाद, और फिर भी बच्चा वारिस बन रहा है। गुज़श्ता सबक में मैंने आपको बतलाया था इमाम साहब की 3 रिवायतें हैं भाई, कि मुर्तद का वारिस कौन बनेगा। एक रिवायत हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह नकल करते हैं इमाम साहब से कि वो वारिस बनेगा जो इर्तेदाद के वक्त भी वारिस हो और मुर्तद की मौत के वक्त भी वारिस हो। दूसरी रिवायत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने नकल की कि मुर्तद का वारिस वो बनेगा जो इर्तेदाद के वक्त मौजूद हो। और तीसरी रिवायत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने नकल की कि मुर्तद का वारिस वो बनेगा जो मुर्तद की मौत के वक्त मौजूद हो। और यहां पर भी ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसका तो हमल ही इर्तेदाद के बाद ठहरा है, तो मालूम है इत्तेदाद के वक्त तो ये मौजूद ही नहीं था, फिर भी मतन में आया कि ये इसका वारिस बनेगा। मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की जो रिवायत है कि वारिस बनने में मुर्तद की मौत मोतबर है, तो मालूम हुआ वो रिवायत सहीह है भाई। तो कहते हैं वरिसहुल इब्नु इन माता अलर रिद्दति औ लहिक बिदारिल हर्बी, तो मुर्तद का ये बेटा उसका वारिस बनेगा अगर वो मुर्तद इर्तेदाद पर मर गया या वो दारुल हर्ब से जा मिला। दारुल हर्ब से जा मिला यानी काजी ने उसका फैसला भी कर दिया। तो कहते हैं अम्मा से हतुल इस्तीलादी, तो उम्मे वलद बनाने का सही होना फलिमा कुलना, वो उस वजह से है जो हमने कह दिया। तवज्जो है, अभी मैंने जो एतराज जिक्र किया कि इमाम साहब के नजदीक तो मुर्तद की मिल्कियत ही बांदियों से खत्म हो चुकी है, तो ये इसकी उम्मे वलद कैसे बनेगी। उम्मे वलद तो वो बांदी बनती है जिसके अंदर इंसान की मिल्कियत हो। तो जवाब गुजर गया कि गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि उम्मे वलद बनाना यह हकीकत मिल्कियत का मोहताज नहीं है भाई। तो कहते हैं अम्मा से हतुल इस्तीलादी, तो उम्मे वलद बनाने का सही होना फलिमा कुलना, तो उस वजह से जो हमने कह दिया कि यह हकीकी मिल्कियत का मोहताज नहीं है। वह अम्मल इर्सु, और बाकी वारिस होना कि जिमिया बांदी का बेटा वारिस नहीं बनेगा और मुसलमान बांदी का बेटा वारिस बनेगा, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह अम्मल इर्सु, और बाकी वारिस होना फली अन्नल उम्मा इदा कानत नसरानियतन, इसलिए क्योंकि मां जब वो ईसाई है वल वलदु तबाउल लहू, और बच्चा जो है वो मुर्तद के ताबे है, बांदी ईसाई और बाप मुर्तद, तो बच्चा किसके ताबे शुमार होगा, मुर्तद के। तो कहते हैं जब मां ईसाई है वल वलदु तबाउल लहू, और बच्चा जो है वो उस मुर्तद के ताबे है, लिकुर्बिही इलल इस्लामी, बवजह इसके कि मुर्तद इस्लाम के करीब है, लिल जबरी अलैही, बवजह उस पर जबर करने के कि मुर्तद पर जबर किया जाएगा, फसार फी हुक्मिल मुर्तदी, तो ये बच्चा भी मुर्तद के हुक्म में हो गया, वल मुर्तदुला यरिसुल मुर्तदा, और मुर्तद जो है वो मुर्तद का वारिस नहीं हो सकता। अम्मा इदा कानत मुस्लिमतन, बाकी अगर मां जो है वो मुसलमान है, फल वलदु मुस्लिमुन तबा अल्लाह, तो बच्चा भी मुसलमान होगा मां के ताबे होकर, लिअन्नहा खैरुहुमा दीना, इसलिए क्योंकि मां जो है वो बेहतर है दीन के एतबार से। बच्चे का बाप और मां, बाप मुर्तद है और मां मुसलमान है, तो मां बेहतर है इन वालिदैन में से दीन के एतबार से। तो कहते हैं लिअन्नहा खैरुहुमा दीना, इसलिए क्योंकि मां जो है वो इन वालिदैन में से बेहतर है दीन के एतबार से, वल मुस्लिमु यरिसुल मुर्तदा, और मुसलमान जो है वो मुर्तद का वारिस होता है, लिहाजा ये बच्चा भी वारिस होगा। आगे देखिए भाई, वह इदा लहिकल मुर्तद बिमालिही बिदारिल हर्बी सुम्मा ज़ुहिरा अला ज़ालिकल माल फहुवा फ़ैउन, भाई आप पढ़ चुके हैं कि मुर्तद हर्बी के दर्जे में है, तो जब ये दारुल हर्ब चला गया है और अपना माल भी साथ ले गया है, या वहां इसने कोई माल कमाया है और फिर दारुल हर्ब पर कब्जा कर लिया गया, तो जिस तरह हर्बी जो है उसका माल माले फै होता है यानी माले गनीमत होता है, इसी तरह मुर्तद का माल भी माले गनीमत होगा भाई। कहते हैं वह इदा लहिकल मुर्तद दुबी माली ही बिदारिल हर्बी, और जब मुर्तद जो है अपने माल के साथ दारुल हर्ब से जा मिला यानी अपने साथ ही माल ले गया, सुम ज़ुहिरा अला ज़ालिकल माली, फिर उस माल पर गलबा पा लिया गया, मुसलमानों ने उस इलाके को फतह कर लिया, फहुआ फै उन, तो मुर्तद का वो माल जो है वो माले फै है, क्योंकि मुर्तद हरबी के दर्जे में और हरबी का माल माले फै होता है, तो फहुआ फै उन, तो मुर्तद का वो माल जो है वो माले फै है यानी माले गनीमत है, फइन लहिका सुम्मा रजा। दूसरी सूरत भाई, मुर्तद भागकर दारुल हर्ब चला गया है और फिर उसके बाद वो दरमियान में छुप कर आया और अपना मजीद माल यहां से लेकर चला गया, जबकि काजी इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर चुका था। मुर्तद भागकर दारुल हर्ब चला गया और काजी ने उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया और यह फैसला मौत हुक्मी के दर्जे में है, तो इसका माल वारिसों की तरह मुंतकिल हो गया, और फिर काजी के इस फैसले के बाद किसी वक्त मुर्तद दोबारा छुप कर आया और फिर यहां से अपना माल लेकर दारुल हर्ब चला गया। और फिर मुसलमानों ने वहां पर गलबा पा लिया। तो याद रखो, ये जो मुर्तद दोबारा माल लेकर गया है, ये वारिसों से लेकर गया है, ये माल तो वारिसों की तरह मुंतकिल हो गया था, वारिस इस माल के मालिक बन गए थे, तो वारिस जो है वो इस माल के मालिक कदीम हैं। लिहाजा मुसलमानों ने गलबा पा लिया और फिर वो माल गनीमत लेकर आए, तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर मालिक कदीम जो है तकसीम से पहले उसको अपना माल माल गनीमत के अंदर मिल जाए तो वो मुफ्त में उसको ले लेगा, क्योंकि वो उसी से छीन कर ले जाया गया था। तो यहां पर भी मुसलमान जब उस माल को ले आए और फिर तकसीम से पहले ही वारिसों को पता चला और वो गए और उनको अपना वो माल मिल गया, तो ये इस माल को मुफ्त में ले लेंगे क्योंकि ये इस माल के मालिक कदीम हैं। भाई तो कहते हैं फईन लाहिका सुम्मा रजा, अगर मुर्तद दारुल हर्ब से जा मिला, सुम्मा रजा फिर लौट आया, व अखज़ा मालन और माल ले लिया, व अलहकहू बिदारिल हर्बी और फिर इस माल को भी उसने दारुल हर्ब से मिला दिया, यानी इस माल को लेकर वो दारुल हर्ब चला गया, फजुहिरा अला जालिकल माली तो उस माल पर गलबा पा लिया गया, फवजदतुल वरसतु क़ब्लल क़िस्मती तो वारिसों ने इस माल को तकसीम से पहले पा लिया, रुद्दा अलैहिम तो यह माल उनको वापस लौटाया जाएगा। भाई लिअन्नल अव्वला मालुन लम यजरी फीहिल इर्सु, भाई देखिए एक सूरत यह थी कि मुर्तद यहां से माल लेकर दारुल हर्ब गया है, वो माल माले फै था क्योंकि वो काजी के फैसले से पहले ही माल ले जा चुका है, और ये जो दूसरी मर्तबा लेकर गया है ये काजी के फैसले के बाद लेकर गया है, तो वारिस इसके मालिक बन चुके हैं, तो इसलिए ये वारिस ही इसके मालिक कदीम हैं। भाई तो कहते हैं ली अन अल अव्वला मालुन, इसलिए क्योंकि पहला जो है वो ऐसा माल था, लम यजरी फीहिल इर्सु कि उसके अंदर वरासत जारी नहीं हुई थी, वो हरबी का माल था तो वो माले फै बनेगा, वसानिन तकला इलल वारसती और दूसरा माल जो है वो उसके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो गया था, बिकजा इल काजी बिल लिहाकी इस वजह से कि काजी ने उसके दारुल हर्ब से लिहाक का फैसला कर दिया था। फिर तर्जमा देख लीजिए, वसानिन तकला इलल वारसती और दूसरा माल जो है वो वारिसों की तरफ मुंतकिल हो चुका है, बिकजा इल काजी बिल लिहाकी काजी का उसके दारुल हर्ब चले जाने का फैसला करने की वजह से, वकान अलवारिसु मालिकन कदीमा और वारिस जो है वो मालिक कदीम है इस माल का, तो तकसीम से पहले वारिसों को मिलेगा तो वो इसको मुफ्त में ले लेंगे। आगे देखिए, व इदा लहिकल मुर्तद बिदारिल हर्ब वलहू अब्दुन, सूरत मसला ये कि मुर्तद जो है वो भागकर दारुल हर्ब चला गया है और यहां इसका एक गुलाम था और वो गुलाम इसके बेटे के हिस्से में आ गया, बेटे ने इस गुलाम को मुकातब बना दिया, बेटे ने इस गुलाम को मुकातब बना दिया, फिर बाद में मुर्तद मुसलमान होकर वापस आ गया। तो कहते हैं इस सूरत में बेटे ने जो अक़्द किताबत किया था वो सही है। भाई क्यों अक़्द किताबत क्यों सही है, मुर्तद वापस आ गया है। कहते हैं भाई बेटे ने जब उसको मुकातब बनाया था तब बेटे को विलायत हासिल थी मुकातब बनाने की, क्योंकि काजी के फैसले के मुताबिक माल बेटे की तरफ मुंतकिल हो चुका था, तो बेटे को विलायत थी मुकातब बनाने की, लिहाजा उसका मुकातब बनाना सही है, अब उस किताबत को खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये मुर्तद जब मुसलमान होकर वापस आ गया है तो आपने पीछे पढ़ा कि जो भी मुअय्यन माल इसके वारिसों के पास हो वो उसको वापस ले लेगा, तो यहां पर भी ये गुलाम जो है ये गुलाम को दोबारा ले लेगा, लेकिन अक़्द किताबत फसख नहीं होगा बल्कि गुलाम उसी तरह अक़्द किताबत पर चलते हुए माल कमाकर लाएगा और वह बदले किताबत अब इस मुर्तद को मिलेगा जो मुसलमान हो चुका है। और अगर गुलाम ने बदले किताबत अदा कर दिया और वह आजाद हो गया तो आप जानते हैं कि आजाद होने वाले गुलाम की वला का मुस्तहिक वही आका होता है जिसने इसको आजाद किया होता है। तो इस गुलाम के बदले किताबत का मुस्तहिक जब ये पुराना आका है तो लिहाजा गुलाम की आजादी भी किसकी तरफ से हुई, इस पुराने आका की तरफ से, लिहाजा वला भी इसी को मिलेगी। आप पढ़ चुके हैं कि किसी शख्स का इंतकाल हो तो सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है और उसके बाद उसके कर्जे अदा किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो माल बाकी बचे उसके तीसरे हिस्से में वसीयत जो है उसको नाफिज करते हैं और फिर बाकी का माल जो है वारिसों में तकसीम करते हैं। और वारिस कई किस्म पर हैं, सबसे पहले जो है कुछ वारिस ज़बिल फुरूस कहलाते हैं जिनके हिस्से बाकायदा कुरान और हदीस में मुकर्रर हैं, तो उनको माल दिया जाता है। और फिर अगर माल बच जाता है तो फिर दूसरे दर्जे पे जो हैं वो असाबात आते हैं, तो वो बाकी माल सारा असाबात ले जाते हैं। और अगर किसी शख्स के नासबाए नसबी नहीं है तो फिर तीसरे दर्जे पर यह माल जो है मुअतिक मैयत की तरह मुंतकिल होता है। अगर वो मैयत किसी जमाने में गुलाम थी और उसको किसी ने आजाद किया था तो तीसरे नंबर पर इस मुअतिक का नंबर आता है। अब यह माल इस मुअतिक को मिल जाएगा और इस मुअतिक को बतौर मीरास के जो माल मिला है इसको वला कहते हैं। तो वला का मुस्तहिक कौन होता है? मुअतिक भाई। और वारिसों में इसका तीसरा दर्जा है भाई। तो अगर पहले दो दर्जे वालों से माल बचा तो फिर ही इसको माल मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह इदा लहिकल मुर्तद दुबिदार हरबी, और जब मुर्तद जो है वो दारुल हर्ब से जा मिला, व लहू अबदुन, और उस मुर्तद का कोई गुलाम है, फकूज या बिही लिबनी ही, तो उस गुलाम का फैसला कर दिया गया उसके बेटे के लिए, यानी उस बरासत में बेटे के हिस्से में गुलाम आया, वका तबाहुली बनू, और उस गुलाम को उस बेटे ने मुकातब बना दिया, सुम्मा जा अल मुर्तद दो मुस्लिमा, और फिर वो मुर्तद मुसलमान होकर आ गया, फल मुकातबतु जायजतुन, तो वो अक़्दे किताबत जायज है यानी वो फसख नहीं होगा, वल किताबतु वल वला उलिल मुर्तद अल्लज़ी अस्लमा, भाई मेरी किताब में है वल किताबतु वल वला उलिल मुर्तदी, और हिदाया के बाद नुस्खों में यहां बदल का लफ्ज भी मौजूद है, वह बदल उल किताबती वल वला उलिल मुर्तदी के, बदले किताबत और वला जो है वो उस मुर्तद के लिए है जो मुसलमान होकर वापस आया है भाई। तो हिदाया के बाद नुस्खों में यहां बदल का लफ्ज मौजूद है। तो अगर बदल का लफ्ज ना भी हो तो भी ये जो आया वल किताबतु वल वला उलिल मुर्तदी, तो इस किताबत से मुराद बदले किताबत ही है भाई। तो कहते हैं वल किताबतु वल वला उलिल मुर्तद अल्लज़ी अस्लमा, और बदले किताबत और वला जो है उस मुर्तद के लिए है जो मुसलमान हो गया है, लिअन्नहु ला वजह इला बुतलानिल किताबति, इसलिए क्योंकि कोई वजह नहीं है कि वह अक़्द किताबत बातिल हो जाए, लिनुफूज़िहा बिदलील मुनफ़िज़िन, इस वजह से कि वह अक़्द किताबत नाफिज हो चुका है, बिदलील एक ऐसी दलील की वजह से, मुनफ़िज़िन जो उसको नाफिज कर रही है, ऐसी दलील है जो इस अक़्द किताबत को नाफिज कर रही है, और वो क्या? वो क़ज़ाए काजी है, काजी ने इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला किया था यानी इस पर मौत हुक्मी का फैसला किया था, और उसकी वजह से बेटे को विलायत मिल गई थी, और उस विलायत के तहत उसने गुलाम को मुकातब बनाया है, तो वह अक़्द किताबत जायज है भाई। ये माना है कि तेली अन्नहु ला वजह इला बुतलानिल किताबती, और कोई सबब नहीं है उस किताबत के बातिल होने का, लिनुफूज़िहा बिदलील मुनफ़िज़ी, इसलिए क्योंकि वाक़े किताबत नाफिज हो चुका है एक ऐसी दलील की वजह से जो उसको नाफिज करने वाली है, फजअलनल वारिस अल्लज़ी हुवा यकूनु खलफहू, बस हमने करार दे दिया उस वारिस को, अल्लज़ी हुवा यकूनु खलफहू, जो उसका खलीफा होगा, वो बेटा जो इसके मरने के बाद इसके माल का खलीफा होगा, फजअलना अलवारिसा, तो हमने करार दे दिया उस वारिस को, अल्लज़ी हुवा यकूनु खलफहू, वो वारिस जो इसका खलीफा होगा, कल वकील मिन जिहतिही, वकील की तरह ही इसकी जानिब से, हमने उस वारिस को जो इसका वो वारिस बेटा जो इसका खलीफा बनेगा इसके मरने के बाद, उसको हमने इसकी तरफ से वकील करार दे दिया, कि यूं समझो ये जो बेटे ने अक़्दे किताबत किया था ये अपने बाप की तरफ से वकील होकर किया था। तो कहते हैं फिर तर्जमा देख लीजिए, फजअलनल वारिस अल्लज़ी हुवा यकूनु खलफहू, तो हमने करार दे दिया उस वारिस को जो इस मुर्तद का खलीफा होगा, इसको हमने करार दे दिया, कल वकीली वकील की तरह, मिन जिहती ही उस मुर्तद की जानिब से, व हुकूकुल अक़्द फीही यरजिउ इलल मुअक्किली, और हुकूक अक़्द जो हैं इस अक़्द किताबत के अंदर मुअक्किल की तरफ लौटते हैं। भाई आप पढ़ चुके हैं कि बाज़ औक़ात हुकूक अक़्द का ताल्लुक वकील से होता है और बाज़ औक़ात मुअक्किल से होता है। मसलन आपने एक आदमी को भेजा कि मेरे लिए गाड़ी खरीद कर लाओ, उसने गाड़ी खरीदी, तो ये बै वाला मामला मामला वकील ने किया है, लिहाजा हुकूक बेअ भी उसी से मुतालिक होंगे, यानी गाड़ी के समन का मुतालबा वकील से ही किया जाएगा और नीज गाड़ी यानी मबीए का मुतालबा यह वकील ही करेगा, मुवक्किल से इन हुकूक का ताल्लुक नहीं है। जबकि कुछ उकूद ऐसे होते हैं कि वहां हुकूक अकद का ताल्लुक मुअक्किल से होता है, जैसे किसने वकील बनाया कि जाकर फुला जगह मेरा निकाह करवा दो, तो वकील ने जाकर वहां निकाह करवा दिया, तो यहां हुकूक अकद का ताल्लुक किससे है? मुअक्किल से है, यानी मुअक्किल का निकाह हुआ है, वकील का निकाह नहीं हुआ है। तो यहां पर भी इसी तरह है, ये जो अकदे किताबत है इसके अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक मुअक्किल से होता है, वकील से नहीं। वकील ने अगर अकदे किताबत किया है तो बदले किताबत का मुस्तहिक वकील नहीं होगा बल्कि मुअक्किल होगा। तो इसलिए मतन में भी यही आया कि बदले किताबत जो है उसका मुस्तहिक वो मुर्तद ही होगा जो मुसलमान हो गया है भाई। तो कहते हैं वह हुकूकुल अक्द फीही यरजिउ इलल मुअक्किल, और हुकूक अक्द जो है वह अक्द किताबत के अंदर मुअक्किल की तरफ लौटते हैं, तो बदल किताबत जो है वह मुअक्किल के लिए होंगे। वल वला उलिमन यकउल इत्को अनहु, वल वला उलिमन, और वला उस शख्स के लिए होती है यकउल इत्को अनहु जिसकी तरफ से आजादी वाकई हो, और आजादी तो इस मुर्तद की तरफ से हुई है, लिहाजा वला का मुस्तहिक भी यही होगा भाई। आगे देखिए भाई, व इदा कतल मुर्तद्दु रजुलन खतअन सुम्मा लहिक बिदारिल हर्ब औ कुतिल अला रिद्दतिहि फदियतु फी मालिन इक्तसबहु फी हालिल इस्लाम खासतन इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। सूरत मसला ये कि मुर्तद ने जिनायत कर दी, किसी शख्स को गलती से कतल कर दिया, मुर्तद ने इर्तिदाद के बाद किसी शख्स को गलती से कत्ल कर दिया, और आप जानते हैं कि कत्ल खता के अंदर किसास नहीं आता, दियत आती है, और दियत के अंदर फिर सारे कबीले वाले मिलकर वो दियत अदा करते हैं 3 साल के अरसे में, यानी 3 किस्तों के अंदर, 3 किस्तों के अंदर वो अदा करते हैं 3 साल में। तो यहां पर मुर्तद ने गलती से कत्ल किया है तो क्या इसके कबीले वाले, इसकी कौम वाले वो दियत अदा करेंगे इसके साथ मिलकर? कहते हैं नहीं, ये जो कबीले वाले अपने किसी आदमी की तरफ से दियत अदा करते हैं उसकी बुनियाद नुसरत पर है कि कबीले का हर आदमी वो कबीले का मददगार है, कबीले का हर आदमी कबीले का मददगार है, तो कबीला भी उसका मददगार है, वो भी दियत के अदायगी में उसका मददगार बन जाता है और अदा करता है। लेकिन यहां ये शख्स मुर्तद हो गया है, जब मुर्तद हो गया तो अब ये कबीले का मददगार नहीं और ना कबीला इसका मददगार है, क्योंकि अब तो ये कत्ल का मुस्तहिक हो चुका है भाई। तो जब नुसरत नहीं तो अब कबीला भी इसकी तरफ से दियत अदा नहीं करेगा, इसी कातिल ही के माल में से दियत अदा की जाएगी। तो कहते हैं वह इदा कतल अल मुर्तद दुरा जुलन खतअन, और जब मुर्तद ने किसी आदमी को गलती से कत्ल कर दिया, सुम्मा लहिक बिदारिल हर्बी, फिर वो दारुल हर्ब से जा मिला, यानी काजी ने उसका फैसला कर दिया, औ कुतिला अला रिद्दती ही, या इसको इर्तेदाद पर ही कत्ल कर दिया गया, फदियतु फी मालिन इक्तसबहु फी हालिल इस्लाम खासतन। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि दियत इस मुर्तद के उस माल में से अदा की जाएगी जो इसने इस्लाम की हालत में कमाया है, क्योंकि इर्तेदाद की हालत में जो माल कमाया है वो तो माले फै है, वो तो तमाम मुसलमानों का हक है, लिहाजा उसमें से दियत अदा नहीं करेंगे बल्कि इसके उस माल में से दियत अदा करेंगे जो इसने इस्लाम की हालत में कमाया था। तो कहते हैं फदियतु फी मालिन, तो दियत जो है उस माल में होगी, एक तसबहु फी हालिल इस्लाम खासतन, जो इसने खास तौर पर इस्लाम की हालत में कमाया है, इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम साहब के नजदीक, वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं अदियतु फी मक्तसबहु फिल इस्लाम वर रिद्दति जमीहा, साहिबैन फरमाते हैं इस्लाम और इर्तेदाद दोनों कमाइयों का मालिक ये मुर्तद ही है, लिहाजा दोनों मालों में से ये दियत अदा की जाएगी। तो कहते हैं वकाल, और साहिबैन फरमाते हैं अदियतु फीमक तसबहु फिल इस्लाम वर रिद्दति जमीआ, के दियत जो है उस माल के अंदर होगी जो इसने इस्लाम और इर्तिदा दोनों में कमाया है, लि अन्नल अवाकिल ला ताकिलुल मुर्तद्दा। यहां से दलील जिक्र कर रहे हैं कि क्या वजह है आकिला क्यों नहीं दियत की अदायगी में शरीक होगी, तो बतलाएंगे कि आकिला मुर्तद की दियत अदा नहीं करते क्योंकि वहां नुसरत नहीं है, एक दूसरे की मदद नहीं है, वो अब कबीले का मददगार न रहा और कबीला भी उसका मददगार न रहा भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल-अवाकिल ला ताकिलुल मुर्तद्दा, अकला याकिलू के माने होते हैं दियत अदा करना, और अवाकिल दियत अदा करने वाले। तो कहते हैं लिअन्न अलअवाकिल ला ताकिलुल मुर्तद्दा, इसलिए क्योंकि दियत अदा करने वाले ला ताकिलुल मुर्तद्दा, वो मुर्तद की दियत अदा नहीं करते, लिन्इदामिन नुसरती, नुसरत न होने की वजह से, यानी मदद नहीं है मुर्तद की तरफ से इनकी मदद नहीं, क्योंकि वो मुर्तद हो गया है, वो तो वाजिबुल कत्ल हो गया है, अगर यहां रहेगा तो कत्ल करेंगे हम, वरना दारुल हर्ब चला जाएगा तो वो हर्बियों के हुक्म में हो जाएगा। तो जब उसकी तरफ से मदद खत्म तो कबीले की तरफ से भी मदद खत्म हो जाएगी। कहते हैं लिनइदाम इन नुसरती, नुसरत के मादूम होने की वजह से, फयकून उफी माली ही, लिहाजा ये दियत इसी कातिल ही के माल में से होगी। वाइंदहुमा, और साहिबैन के नजदीक, अलकसबानी जमी अन मालूहू, के दोनों कमाइयां जो हैं वो सारी इसका माल हैं, लिनुफूजी तसरुफाती ही फिलहालैनी, इस वजह से कि इसके तसरुफात नाफिज हैं दोनों हालतों में, इस्लाम की हालत में भी और इर्तिदाद की हालत में भी, क्योंकि अभी भी अपने माल का मालिक है। वलिहादा यजरिल इर्सुफी हिमा इंदहुमा, और इसी वजह से इन दोनों मालों के अंदर वरासत जारी होती है, इंदहुमा साहिबैन के नजदीक, व इंदहु और इमाम साहिब के नजदीक, मालुहुल मुक्तसबु फिल इस्लाम, याद रखो ये मालुहु ये है मुबतदा और अल मुक्तसबु फिल इस्लाम ये है खबर, और साहिब हिदाया खबर को भी मारिफा लाए अल मुक्तसब, और आप पढ़ चुके हैं कि अगर मुक्तदा के साथ साथ खबर भी मारिफा आए तो वो हसर का फायदा देती है, हसर यानी तख्सीस का फायदा देती है। तो क्या तर्जमा होगा, मालुहुल मुक्तसबु फिल इस्लाम, कि इस मुर्तद का जो माल है अल मुक्तसबु फिल इस्लाम वो ही है जो इसने इस्लाम के अंदर कमाया है, इस मुर्तद का माल वो ही है जो इसने इस्लाम के अंदर कमाया है, जो इर्तेदाद में कमाया है वो इसका माल नहीं, इसीलिए वो इसके वारिसों की तरफ भी मुंतकिल नहीं होता। तो कहते हैं वाइंदहू और इमाम साहब के नजदीक, मालूहू इस मुर्तद का जो माल है, अल मुक्तसबु फिल इस्लामी वो ही है जो इसने इस्लाम की हालत में कमाया है, या यूं तर्जमा कर लें मालुहुल मुक्तसबु फिल इस्लामी, कि मुर्तद का माल इस्लाम की हालत में कमाया हुआ ही है, लिनफाजी तसरुफी ही फी ही, इस वजह से कि इस मुर्तद का तसरुफ उस माल के अंदर नाफिज है जो उसने इस्लाम में कमाया है, दून अल मकसूबी फिर रिद्दती, ना कि वो जो इसने इर्तेदाद की हालत में कमाया है, लितवक्कुफी तसरुफी ही, उसके तसरुफ के मौकूफ होने की वजह से, कि वो माल जो इसने इर्तेदाद की हालत में कमाया है उसमें तसरुफ मौकूफ है इसका। तो कहते हैं लितवक्कुफी तसरुफी ही, इसके तसरुफ के मौकूफ होने की वजह से, वलिहादा कान अल अव्वलु मीरासन इंदहु, और इसीलिए अव्वल माल जो है वो मीरास होता है इमाम साहेब के नजदीक, वसानी फै अन इंदहु, और दूसरा जो है वो माल फै होता है इमाम साहेब के नजदीक, पहला माल यानी जो इस्लाम में कमाया है वो इमाम साहेब के नजदीक वो माल मीरास होता है, और जो इर्तेदाद में कमाया है वो माल फै होता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलिहादा और इसी वजह से, कान अल अव्वलु मीरासन इंदहु, पहला माल जो है वो मीरास होता है इमाम साहब के नजदीक, वसानी फै अन इंदहु, और दूसरा माल वो माले फै होता है इमाम साहब के नजदीक। आगे देखिए, वह इदा कुतियात यदुल मुस्लिमी आमदन फरतद दवल इयादु बिल्लाही सुम्ममा ताला रिद्दतिही मिन जालिका। भाई सूरत है मसला ये, एक मुसलमान है और उसका हाथ काट दिया गया, किसी ने जानबूझ कर इसका हाथ काटा है, और आप जानते हैं कि जानबूझकर हाथ कोई काटेगा तो वहां अगर किसास लिया जा सकता है तो किसास लिया जाएगा। तवज्जो है, किसास की बुनियाद होती है बराबरी पर, जहां बराबरी हो सके वहां किसास लेते हैं, जहां बराबरी ना हो सके वहां किसास नहीं लेते, फिर हाथ की दियत आ जाती है। तो अगर एक शख्स ने दूसरे का हाथ जानबूझकर जोर से काटा है तो मुजरिम का हाथ भी जोर से काटा जा सकता है, बराबरी मुमकिन है, तो यहां किसास आएगा और मुजरिम का हाथ भी उसी जोर से काट दिया जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि मुजरिम ने हाथ ऐसी जगह से काटा है कि वहां बराबरी नहीं हो सकती, मसलन कलाई के दरमियान से, और कलाई के दरमियान तो हड्डी है, और हड्डी के अंदर बराबरी नहीं हो सकती क्योंकि हड्डी सख्त है, तो जब हड्डी को तोड़ेंगे तो बेआईनी ही उसी तरह तोड़ दिया जाए जिस तरह मुजरिम ने तोड़ी होती थी, यह मुमकिन नहीं है। तो जहां पर बराबरी ना हो सके वहां फिर दियत आती है, और हाथ का जो जमान है वह निस्फे दियत है। एक इंसान की कीमत 100 ऊंट है तो हाथ की कीमत 50 ऊंट है भाई, तो निस्फे दियत आएगी। तवज्जो है। और यहां नीस एक और बात भी याद रखना, मसलन एक शख्स ने दूसरे का हाथ काट दिया है, वहां अव्वलन किसास आएगा। अगर बराबरी नहीं हो सकती तो फिर निस्फे दियत आएगी, निस्फे दियत। लेकिन वो जख्म फैल गया और उसी जख्म से उस आदमी की मौत वाकई हो गई, तो मालूम हुआ इसी जख्म ने मौत तक पहुंचाया है, लिहाजा मुजरिम पर अब निस्फे दियत नहीं आएगी बल्कि पूरी जान की दियत आ जाएगी उस पर। तवज्जो है। मालूम हुआ हाथ काटा हो तो निस्फे दियत आएगी, लेकिन अगर वही हाथ का काटना मौत तक पहुंचा दे तो मुजरिम को पूरी दियत देना पड़ेगी। ज़ाब्ता समझ में आ गया। तो अब यहां पर सूरत यह है कि एक मुसलमान का हाथ काटा गया जानबूझकर, और अलैयाज़ु बिल्लाह वो मुसलमान मुर्तद हो गया, और फिर वही जख्म फैल गया और उससे उस शख्स की मौत वाकई हो गई। तो अब उसके अंदर चार सूरतें बनेंगी भाई, चार सूरतें बनेंगी, वो साहिब हिदायत बयान फरमाएंगे। एक सूरत यह कि हाथ काटा गया इस्लाम की हालत में, और फिर यह शख्स जो है, ये शख्स जिसका हाथ काटा गया है ये मुर्तद हो गया, और फिर यही जख्म फैलकर जानलेवा बन गया और इस मुर्तद की मौत वाकई हो गई। तो फिर इस सूरत में याद रखो, जब हाथ काटा गया था तो इस शख्स की जान मासूम थी, तो इसका हाथ भी मासूम और महफूज था। तो लिहाजा यहां हाथ के अंदर जमान आएगा, यानी निस्फे दियत आएगी, और फिर उसके बाद यह शख्स मुर्तद हुआ और उसके बाद यही जख्म फैला और यह शख्स मर गया। और आप जानते हैं कि इर्तेदाद की वजह से इस्मत खत्म हो जाती है, अब उस शख्स की जान मासूम न रही, वो मुबाहुद्दम हो चुका है। तो एक मुसलमान का हाथ काटा गया और फिर अलायाजु बिल्ला वो मुर्तद हो गया, और फिर वही जख्म फैला और इर्तेदाद की हालत में ही ये वो शख्स मर गया। तो इस सूरत में याद रखो, हमारे फुकाहा फरमाते हैं कि मुजरिम पर निस्फे दियत आएगी, इस मुजरिम पर निस्फे दियत आएगी। सवाल पैदा होता है, निस्फे दियत कैसे? इसी हाथ के काटने ने उसको मौत तक पहुंचा दिया है, लिहाजा पूरी दियत आनी चाहिए। तो जवाब यह कि जब इसने हाथ काटा था तो वो हाथ मासूम था, उसका काटना मुबाह नहीं था, लेकिन जब यह शख्स मुर्तद हुआ तो इर्तेदाद की वजह से अब उसकी जान की इस्मत बाकी न रही। तो लिहाजा ये जो सिरायत पाई गई है वो महल्ले गैर मासूम में सिरायत हुई है, लिहाजा उस सिरायत की वजह से अब पूरी जान का, पूरी जान की दियत नहीं आएगी भाई। जब हाथ काटा था हाथ मासूम था, लेकिन जब जान गई है वो मासूम और महफूज नहीं, लिहाजा वो हाथ ही का जमान आएगा, जान का जमान नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। ये एक सूरत थी कि इर्तेदाद की हालत में ही वो मर गया है, यानी सिरायत इर्तेदाद की हालत में पाई गई, तवज्जो है। दूसरी सूरत ये है कि मुसलमान का हाथ काट दिया गया, फिर अलयाजु बिल्ला ये मुर्तद हो गया, और फिर ये दारुल हर्ब चला गया, और काजी ने इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया, और काजी का फैसला इसके लिए मौत के हुक्म में है, लिहाजा गोया इस शख्स पर मौत हुक्मी आ गई। और फिर यह शख्स जो दारुल हर्ब गया है और जिसका हाथ कटा हुआ है और यह मुर्तद है, यह फिर वहां से मुसलमान हुआ और वापस दारुल इस्लाम आ गया, और दारुल इस्लाम के अंदर वो जख्म फिर फैल गया और उससे इस मुसलमान की मौत हो गई। तो कहते हैं इस सूरत में भी निस्फे दियत ही आएगी, पूरी दियत नहीं। भाई क्या वजह है? अब तो इस्लाम की हालत में यह जख्म फैला है। कहते हैं भाई जिस वक्त यह मुर्तद हुआ और दारुल हर्ब चला गया और काजी ने इसकी मौत का फैसला कर दिया, तो मौत के बाद जख्म नहीं फैल सकता। जख्म तो जिंदगी में फैलता है, मौत के बाद तो नहीं फैल सकता। तो काजी ने जब इसकी मौत हुक्मी का फैसला कर दिया है तो अब गोया उस शख्स पर मौत आ गई, अब सिरायत मुमकिन ही न रही, और फिर उसके बाद दोबारा यह मुसलमान होकर आया है, तो यह गोया उसको नई जिंदगी मिली है, और इस जिंदगी के अंदर गुज़श्ता जिंदगी के जुर्म की वजह से सजा नहीं दी जा सकती भाई। तवज्जो है। वो जो जिनायत थी मौत हुक्मी की वजह से, उस जिनायत का असर खत्म हो गया, खत्म हो गया, लिहाजा वो पहली जिनायत इस नई जिंदगी में वापस नहीं आएगी भाई। तवज्जो है। लिहाजा इस सूरत में भी निस्फे दियत ही आएगी, हाथ का जमान निस्फे दियत आएगा, पूरी जान का जमान नहीं आएगा। اور تیسری اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہاتھ کاٹا گیا اور اعوذ باللہ یہ مرتد ہو گیا، اور پھر یہ ایک صورت یہ ہے دار الحرب گیا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی مسلمان ہو کر آ گیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ دار الحرب گیا ہی نہیں اور یہیں پر یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی. تو قاضی کے فیصلے سے پہلے یوں سمجھیں گے یہ مرتد ہوا ہی نہیں، اس کا ارتداد بھی لا ارتداد کی طرح ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ارتداد ثابت ہوگا اور موت حکمی ثابت ہوگی. تو جب قاضی کا فیصلہ نہیں آیا تو یوں سمجھیں گے ارتداد آیا ہی نہیں. جب ارتداد آیا ہی نہیں اور پھر اسلام کی حالت میں موت ہوئی ہے اسی زخم کی وجہ سے، تو اب پوری جان کی دیت دینا پڑے گی اس مجرم کو. بھائی توجہ ہے، تو یہ دو صورتیں بن گئیں اکٹھی. ایک صورت کیا کہ مرتد ہوا، دار الحرب چلا گیا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے مسلمان ہو کر واپس آ گیا، تو یوں سمجھیں گے یہ مرتد ہوا ہی نہیں تھا، یا یہ مرتد ہوا دار الحرب نہیں گیا، یہیں پر ہے مرتد ہوا اور پھر واپس یہیں پر مسلمان ہو گیا. تو چاہے دار الحرب جائے یا نہ جائے، قاضی کے فیصلے سے پہلے جب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو یوں سمجھیں گے ارتداد ہے ہی نہیں. جب ارتداد نہیں ہے تو یہی زخم جب پھیل گیا اور اس نے موت تک پہنچا دیا تو اب اس کی وجہ سے پوری جان کا ضمان دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چار صورتیں سمجھ میں آ گئیں. پہلی صورت کیا، ہاتھ کاٹا گیا پھر یہ شخص مرتد ہوا اور یہی زخم پھیلا ارتداد کی حالت میں اور یہ مر گیا. دوسری صورت، ہاتھ کاٹا گیا اور پھر یہ شخص مرتد ہوا، دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور پھر یہ وہاں سے مسلمان ہو کر واپس آیا اور یہ زخم پھیلا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو دونوں صورتوں کے اندر یاد رکھو یہاں صرف ہاتھ کی دیت آئے گی، ہاتھ کی دیت آئے گی، کیونکہ ایک صورت کے اندر جان جو گئی ہے وہ ارتداد کی حالت میں گئی ہے لہذا اس جان کی کوئی قیمت نہیں، اور دوسری صورت میں درمیان میں قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تھا تو اب اگرچہ اس فیصلے کے بعد زخم پھیلا ہے اسلام کی حالت میں، لیکن ایک دفعہ جب قاضی کا فیصلہ بیچ میں آ گیا یعنی موت بیچ میں ایک دفعہ آ گئی تو اب سرایت نہیں ہو سکتی، لہذا اب اس صورت کے اندر بھی صرف ہاتھ ہی کا ضمان دینا پڑے گا بھائی. اور تیسری اور چوتھی صورت میں وہ جس میں قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے دار الحرب جائے چاہے نہ جائے، دونوں صورتوں کے اندر یہ زخم پھیل گیا ہے تو یوں سمجھیں گے ارتداد تھا ہی نہیں اور یہ اسلام کی حالت میں ہی ہاتھ کاٹا گیا اور اسلام کی حالت میں ہی اس نے موت تک پہنچا دیا، تو اس زخم کی وجہ سے اب پوری جان کی دیت آئے گی. ایک بات یاد رکھنا بھائی، یہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجرم نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا ہے، مجرم نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا ہے. جب جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا جائے تو وہاں تو قصاص آتا ہے، لیکن یہاں قصاص نہیں آئے گا، چاروں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اندر بھی قصاص نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ درمیان میں ارتداد آ گیا اور ارتداد کی وجہ سے شبہ آ گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں قصاص جو ہے وہ ادنا شبے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو بہرحال بے شک آخری دو صورتوں میں بے شک قاضی نے اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ارتداد تو درمیان میں آیا تھا اور اس کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبے کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ عَمْدًا، اور جب ایک مسلمان کا ہاتھ جان بوجھ کر کاٹا گیا فَرْتَدَّ، تو مرتد ہو گیا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ، پھر مسلمان جو ہے اپنے ارتداد پر ہی اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے مر گیا، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ، پھر وہ مرتد جو ہے اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا، او لحق بدار الحرب، یا وہ دار الحرب چلا گیا یعنی قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا، ثم جاء مسلما، پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آیا، فمات من ذالک، پھر وہ اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے مر گیا، فعل القاطع نصف الدیت، تو دونوں صورتوں میں ہاتھ کاٹنے والے پر نصف دیت ہے، فی مالہ، اسی قاطع کے مال میں، ہاتھ کاٹنے والے کے ہی مال میں سے. भाई आकेला नहीं अदा करेंगे। भाई क्यों आकेला क्यों नहीं अदा करेंगे? कहते हैं इसलिए क्योंकि हमने बता दिया कि हाथ जानबूझकर काटा है मुजरिम ने, और जो जुर्म जानबूझकर किया जाए उसके अंदर आकेला दियत अदा नहीं करते भाई। हां अलबत्ता अगर गलती से हाथ काटा है फिर इसके अंदर आकेला भी दियत के अदा करने में शरीक होंगे, क्योंकि मुजरिम नहीं मुर्तद हो रहा बल्कि जिसका हाथ काटा गया है वो मुर्तद हुआ था भाई। तो कहते हैं फअलल काति निस्फुद्दियति फी मालिही, तो हाथ काटने वाले पर निस्फ दियत आएगी उसके माल में, लिल वारासती उस मुर्तद के वारिसों के लिए उनको देनी पड़ेगी निस्फ दियत। दोनों सूरतों में तवज्जो है, अब दोनों सूरतें अलग अलग बयान करेंगे। अमल अव्वलु, तो पहली सूरत जो है, पहली सूरत कौन सी थी? हाथ काटा गया या मुर्तद हुआ और फिर इर्तिदाद की हालत में ही इस जख्म ने सिरायत की, यह जख्म फैल गया और इसकी इर्तिदाद की हालत में मौत हो गई। तो कहते हैं अमल अव्वलु, तो पहली सूरत में जब वो इर्तिदाद पर ही मरा है, फली अन्न सिराया था, इसलिए क्योंकि सिरायत जो है, सिरायत का माना है फैल जाना भाई। कहते हैं फली अन्न सिराया था, इसलिए क्योंकि उस कता का फैल जाना, हल्लत ये नाजिल हुआ है, महल्लन गैर मासूमिन, ऐसे महल में जो मासूम नहीं है, ये जख्म फैल गया है भाई, ये जब मुर्तद हो गया तो अब ये मासूम ना रहा, महफूज ना रहा। तो कता तो यद मासूम में था लेकिन सिरायत तो गैर मासूम जान के अंदर है, लिहाजा सिरायत का एतबार नहीं किया जाएगा, सिर्फ कता का एतबार किया जाएगा और निस्फ दियत आएगी। तो कहते हैं फली अन्न सिरायत हल्लत महल्लन गैर मासूमिन, इसलिए क्योंकि सिरायत जो है एक गैर मासूम जगह के अंदर नाजिल हुई है, फउह दीरत, लिहाजा इसको साकित कर दिया जाएगा, बेखिलाफी मा इदा कुतिया यदुल मुर्तदी। दूसरी सूरत भाई इधर देखिए, यह एक अलग बीच में सूरत जिक्र कर रहे हैं, एक मुर्तद का हाथ काटा गया और फिर वह मुर्तद मुसलमान हो गया और फिर वो जख्म फैल गया और इस्लाम की हालत में ही इसका इंतकाल हो गया। कहते हैं इस सूरत में कोई जमान नहीं आएगा, क्योंकि जब हाथ काटा गया था उस वक्त ये मुर्तद था, तो मालूम हुआ इसकी जान और हाथ की कोई इस्मत नहीं, जब इस्मत नहीं है जान और हाथ की तो इसकी वजह से कोई जमान नहीं आएगा भाई। इसलिए क्योंकि अगरचे सिरायत जो है वह इस्लाम की हालत में हुई है, यह मरा इस्लाम की हालत में है, लेकिन किस जुर्म की वजह से? वो जुर्म जो इर्तिदाद की हालत में किया गया था, और इर्तिदाद की हालत में जो जुर्म किया जाए उसका कोई एतबार नहीं है, वो रायगां है भाई, वो जाया है। तो जो जुर्म एक दफा जब उसको रायगां करार दिया जा चुका है, यानी जाया करार दिया जा चुका है, उसको दोबारा मोतबर करार नहीं दिया जा सकता। कहते हैं बखिलाफी मा इदा कुतिया यदुल मुर्तदी, बखिलाफ इसके कि जब मुर्तद का हाथ काट दिया गया, सुम्मा असलामा, फिर उसके बाद वो मुर्तद मुसलमान हो गया, फमा तमिन जालिका, फिर वो उसी हाथ काटने की वजह से मर गया। तो ये सूरत पहली दोनों सूरतों के बरखिलाफ है, क्योंकि वहां पर जो हाथ काटा गया था वो मुसलमान का हाथ काटा गया था, बाद में वो मुर्तद हुआ था, और यहां मुर्तद का हाथ काटा गया है और मुर्तद पर कोई जिनायत की जाए तो उसका कोई एतबार नहीं है भाई। तो कहते हैं बेखिलाफी मा इदा कुतिया यदुल मुर्तद दी सुम्मा असलमा, बखिलाफ इसके कि जब मुर्तद का हाथ काट दिया गया, सुम्मा असलमा, फिर वो मुसलमान हो गया, फमा तमिन सालिका, फिर वो उसी हाथ काटने की वजह से मर गया। तो इस सूरत में कोई जमान नहीं आएगा, लि अन्नल इहदार ला यलहकुहु लितबार, इहदार का माना है रायगा करना, जाया यानी बातिल करना। बाज औकात एक आदमी को कत्ल कर दिया जाता है तो कहते हैं इसका खून रायगा है, यानी जाया है, माना यह होता है कि इसकी वजह से न किसास आएगा और न दियत आएगी। जैसे कोई शख्स मुर्तद हो गया और काजी के फैसले से पहले किसने इसको कत्ल कर दिया तो इसका खून रायगा है, यानी जाया है, उसका कोई एतबार नहीं है, इस कत्ल की वजह से न किसास आएगा और न दियत आएगी भाई। तो कहते हैं ली अनल इहदारा ला यलहकुहु लितबारु, इसलिए क्योंकि रायगा करना यानी बातिल करना, ला यलहकुहु लिअतिबारु, इसको एतबार लाहिक नहीं हो सकता। एक चीज जब इब्तिदाअन रायगां है और उसका कोई एतबार नहीं, तो बाद में उसका एतबार किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज रायगां है वो बाद में मोतबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं लिअन्न अलइहदार ला यलहकुहु लिअतिबारु, इसलिए क्योंकि बातिल करना, इसको मोतबर होना लाहिक नहीं हो सकता। अमल मोतबर फकद यह दुरु बिल इब्राई, हां एक चीज मोतबर है बाद में वो रायगा करार दे दी जाए, ऐसा हो सकता है जी। एक चीज मोतबर है और उसको रायगा करार दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। मसलन जैसे आप देखते हैं एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दिया, तो ये कत्ल मोतबर है, इसकी वजह से अगर जानबूझकर कत्ल किया है तो किसास आएगा, गलती से कत्ल किया है तो दियत आएगी। लेकिन अगर मकतूल के अवलिया ने माफ कर दिया तो वो ही कत्ल जो पहले मोतबर था अब रायगा चला गया। तवज्जो है, मालूम हुआ जो जुर्म इब्तिदा के अंदर रायगा है वो बाद में मोतबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसका बरअक्स हो सकता है, एक जुर्म जो पहले तो मोतबर है और बाद में उसको रायगा करार दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ गई। यह माना है अमल मोतबर फकद युह दरु बिल इब्राई, और वो चीज जो मोतबर हो फकद युह दरु बिल इब्राई, तो तहकीक उसको कभी जो है बातिल कर दिया जाता है, साकित कर दिया जाता है, बिल इब्राई माफ कर देने की वजह से। फकदा बिर रिद्दति, तो इसी तरह इर्तेदाद की वजह से भी होगा, तो इसी तरह इर्तेदाद की वजह से भी होगा। मुसलमान का हाथ काटा गया है तो यह मोतबर है, और बाद में वो सिरायत कर गया लेकिन बीच में क्या आ गया, इर्तेदाद आ गया, तो वो जो मोतबर था वो रायगा अब करार दे दिया गया। ये माना है फकदा बिर रिद्दति, तो इसी तरह इर्तेदाद की वजह से जो होगा यानी जो मोतबर है वो रायगा हो जाएगा। वह अम्मसानी, और दूसरी सूरत जो है, दूसरी सूरत क्या थी कि मुसलमान का हाथ काटा गया और फिर अलयाजुबिल्ला वो मुर्तद हो गया और दारुल हर्ब चला गया और काजी ने इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया, फिर वहां से मुसलमान होकर ये वापस आया है और फिर उसी जख्म से ये मर गया है, तो अब भी इस सूरत में भी सिर्फ हाथ का जमान आएगा क्योंकि दरमियान में काजी का फैसला यानी इस शख्स की मौत आ चुकी है और मौत की वजह से सिरायत खत्म हो गई, मौत के बाद कोई जख्म नहीं फैल सकता, लिहाजा बीच में एक दफा मौत आ गई तो अब यह सिरायत मोतबर नहीं है। तो कहते हैं वह अम्मसानी, और दूसरी सूरत जो है वह हुआ मा ईदा लाहिका, और यह वो सूरत है जब वो दारुल हर्ब जा मिले। वह माना हु ईदा कुज या बिलहाकी, भाई मतन में तो आया था औ लाहिका भी दारुल हर्ब, यह दारुल हर्ब जा मिला है, मैंने बतलाया था कि माना यह है कि काजी उसका फैसला कर दे, सिर्फ दारुल हर्ब जाने से यह मुर्दे के हुक्म में नहीं है जब तक काजी फैसला ना कर दे, यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं वह हुआ मा ईदा लाहिका, और उसी सूरत जब वो दारुल हर्ब चला जाए। वह माना हु ईदा कुजिया बिल लिहाकी, और माना इस कौल का यह है कि जब उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया जाए तो अब भी सिर्फ हाथ का जमान आएगा। कहते हैं लिअन्नहु सारा मैतन तकदीरन, इसलिए क्योंकि यह शख्स जो है मुर्दा हो गया तकदीरन, तकदीरन यानी फर्ज कर लिया गया कि यह शख्स मर चुका है यानी मौत का हुक्म हो गया इस पर। तो कहते हैं लिअन्नहु सारा मैतन तकदीरन, इसलिए क्योंकि यह शख्स जो है तकदीरन मुर्दा हो चुका है यानी हुक्मन यह मुर्दा हो चुका है। वल मौतु यक्तउ सिरायता, और मौत जो है फैल जाने को काट देती है, मौत के बाद जख्म नहीं फैल सकता। तो कहते हैं वल मौतु यक्तउ सिरायता, और मौत जो है वो सिरायत को कता कर देती है, काट देती है। वह इस्लामुहु हयातुन हादिसतुन फित तकदीरी, और वह इस्लामुहु, और इसका मुसलमान होना हयातुन हादिसतुन, ये नई जिंदगी है फित तकदीरी, तकदीर के यानी हुक्म के एतबार से, ये हुक्म के एतबार से नई जिंदगी है। जब नई जिंदगी है तो इसके अंदर पुरानी जिंदगी के जुर्म की वजह से सजा नहीं दी जा सकती। तो कहते हैं वह इस्लामुहु हयातुन हादिसतुन फित तकदीरी, और तकदीर के एतबार से इसका मुसलमान होना नई जिंदगी है। फला यऊद हुक्मुल जिनायतिल उला, तो पहली जिनायत का हुक्म वापस नहीं आ सकता। फईदा लम यकजी, यहां से तीसरी सूरत बयान कर रहे हैं कि दारुल हर्ब तो चला गया है लेकिन काजी ने अभी फैसला नहीं किया था कि यह मुसलमान होकर वापस आ गया, तो जब काजी का फैसला नहीं आया दरमियान में तो यूं समझेंगे यह मुर्तद हुआ ही नहीं था, चाहे दारुल हर्ब से होकर वापस आया है चाहे यहीं पर है। यहीं पर है मुर्तद हुआ और फिर काजी के फैसले से पहले मुसलमान हो गया। तो दोनों सूरतों के अंदर अब जख्म के फैलने का एतबार किया जाएगा, क्योंकि जब तक काजी का फैसला नहीं तो गोया इर्तेदाद पाया ही नहीं गया। इस्लाम में ही हाथ काटा और इस्लाम के अंदर ही वो मौत का सबब बन गया, तो लिहाजा अब पूरी दियत देना पड़ेगी। तो कहते हैं फ़ाइदा लम यक़ज़िल काज़ी बिलिहाक़िही, बस अगर काजी ने इसके दारुलहर जाने का फैसला नहीं किया, फ़हुवा अलल ख़िलाफ़िल लदी नुबय्यिनुहु इंशाअल्लाहु ताला, तो इस सूरत में ये उस इख्तिलाफ पर है जिसको हम इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। तो ये उस इख्तिलाफ पर है जिसको हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे, इसी को आगे बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया। कहते हैं काला, साहिब कुदूरी फरमाते हैं, फ़इल्लम यल्हक व अस्लमा सुम्मा माता, फ़इल्लम यल्हक, अगर ये दारुल हर्ब नहीं गया, दारुल हर्ब नहीं गया, क्या माना, यानी काजी ने फैसला नहीं किया, चाहे गया हो चाहे न गया हो, दोनों का एक ही हुक्म है, मुर्तद हुआ है लेकिन काजी के फैसले से पहले ही फिर वापस मुसलमान हो गया, चाहे दारुल हर्ब गया हो चाहे दारुल हर्ब न गया हो, दोनों सूरतों में एक ही हुक्म है भाई। तो कहते हैं काला, साहिब कुदूरी फरमाते हैं, फ़इल्लम यल्हक, अगर वो दारुल हर्ब नहीं गया यानी काजी ने उसका फैसला नहीं किया, वह असलमा और मुसलमान हो गया, सुम्मा माता फिर मर गया यानी उसी जख्म की वजह से, फ़अलैहि दियतु कामिलतन, तो फिर इस मुजरिम पर दियत है कामिलतन पूरी होकर, इन इस मुजरिम पर पूरी दियत आ जाएगी। वहां दा इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह ताला, और ये शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वकाल मुहम्मद व जुफर रहिमहुमल्लाह ताला, और इमाम मुहम्मद और इमाम जुफर रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं, फी जमी ज़ालिका निस्फ़ु दियती, कि सारे के अंदर निस्फ़ दियत आएगी तमाम सूरतों में। भाई शेखैन रहिमहुमल्लाह तो फरमाते हैं पहली दो सूरतों में निस्फ दियत आएगी और आखिरी दो सूरतों में पूरी दियत आएगी। पहली दो सूरतें कौन सी थी, कि हाथ इस्लाम में कटा है और मौत इर्तेदाद में हुई है, या दरमियान में मौत हुक्मी आ गई है और फिर उसके बाद इस्लाम में मौत हुई है। तो बहरहाल जब इर्तेदाद बीच में आ गया या मौत आ गई बीच में, तो अब सिरायत का एतबार नहीं, निस्फ दियत देना पड़ेगी। तवज्जो है, जबकि अगले दो मसले जिनमें काजी ने इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला नहीं किया, चाहे ये गया लेकिन फिर काजी के फैसले से पहले मुसलमान होकर आ गया, या यहीं पर ये वापस दोबारा मुसलमान हो गया, तो इन दोनों सूरतों में इसका इर्तेदाद भी ला इर्तेदाद की तरह है। तो लिहाजा इस सूरत में उसी जख्म से मौत हुई है तो पूरी दियत आएगी। जख्म लगाते वक्त भी यह शख्स मुसलमान था और मरते वक्त भी यह मुसलमान था, तो जख्म और सिरायत दोनों सूरतों में इस्लाम मौजूद है, पूरी दियत आएगी शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक। तवज्जो है, फिर सुनो, शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक पहली दो सूरतों में निस्फ दियत और आखिरी दो सूरतों में पूरी दियत आएगी, जबकि इमाम जुफर और इमाम मोहम्मद रहमहुमल्लाह फरमाते हैं चारों सूरतों में निस्फ दियत ही आएगी, चारों सूरतों में निस्फ दियत आएगी। पहली दो सूरतों में तो शेखैन रहमहुमल्लाह भी फरमाते थे निस्फ दियत आएगी, इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर रहमहुमल्लाह भी फरमाते हैं वहां निस्फ दियत आएगी। आखिरी दो सूरतों में जब ये मुर्तद तो हुआ लेकिन काजी के फैसले से पहले ही दोबारा मुसलमान हो गया, तो शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं इसके इर्तेदाद का कोई एतबार नहीं, लेकिन इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर रहमहुमल्लाह फरमाते हैं नहीं, इर्तेदाद का एतबार है, चाहे काजी ने फैसला नहीं किया लेकिन इर्तेदाद तो आ गया बीच में, जब इर्तेदाद आ गया तो सिरायत अब नहीं हो सकती, लिहाजा सिर्फ कता जुर्म है और वो निस्फ दियत देनी पड़ेगी। तो कहते हैं वकाल मुहम्मद व जुफर रहिमहुमल्लाह ताला, और इमाम मुहम्मद और इमाम जुफर रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं, फी जमी ज़ालिका निस्फ दियती, कि इन तमाम सूरतों में यानी चारों सूरतों में निस्फ दियत आएगी, लिअन्न इतराज अर्रिद्दती, इसलिए क्योंकि इर्तेदाद का पेश आना, अहदारा सिरायता, इसने सिरायत को बातिल कर दिया, फला यनकलिबु बिल इस्लामी इला जमानी, लिहाजा ये इस्लाम की वजह से दोबारा जमान की तरफ नहीं पलटेगा। भाई बात समझ में आ गई, तो वो जिनायत मुनकतिअ हो चुकी है इर्तेदाद की वजह से, दोबारा उसका एतबार अब नहीं किया जा सकता। ये माना है फला यनकलिबु बिल इस्लामी इला जमानी, तो लिहाजा इस्लाम की वजह से यह जमान की तरफ नहीं पलटेगा। कमा इदा कुतिया यदु मुर्तद दिन फा असलमा, जैसे किसी मुर्तद का हाथ काट दिया जाए फिर वो मुसलमान हो जाए। मुर्तद का हाथ काटा गया तो ये जिनायत रायगा है, इसका कोई एतबार नहीं। फिर बाद में वो मुसलमान हो गया और उस जख्म की वजह से मौत हो गई, फिर भी जब एक दफा एक जिनायत का एतबार नहीं था तो दोबारा इस्लाम की वजह से वो मोतबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये माना है कमा इदा कुतिया यदु मुर्तदिन फा असलमा, जैसे कि एक मुर्तद का हाथ काट दिया जाए फिर वो मुसलमान हो जाए। तो जैसे वहां पर कातिल पर कोई जमान नहीं आता, तो यहां पर भी जब इर्तेदाद बीच में आ गया तो अब सिरायत की वजह से कोई जमान नहीं आएगा बल्कि निस्फ दियत ही आएगी। भाई वलहुमा, अब शेखैन रहमहुमल्ला की दलील आ गई। वलहुमा और शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नल जिनायत वरदत अला महल मासूमिन व तमत फीही। शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं जब जिनायत की गई थी उस वक्त यह शख्स मुसलमान था और उसी हाथ की वजह से जब मौत आई है तो उस वक्त भी ये मुसलमान है, लिहाजा यहां सिरायत मोतबर है और पूरी दियत देना पड़ेगी। तो कहते हैं वलहुमा और शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नल जिनायत वरदत अला महल मासूमीन, कि ये हाथ काटने की जो जिनायत है ये एक मासूम महल पर वारिद हुई, यानी इस मुसलमान पर ये जुर्म किया गया है। व तमत फीही, और नीज ये जिनायत जो है उस महल मासूम में ही पूरी हुई है, यानी महल मासूम के अंदर ही ये जख्म फैल गया है और उसकी मौत आई है। दरमियान में अगरचे इर्तेदाद था लेकिन उसका कोई एतबार नहीं क्योंकि काजी ने फैसला नहीं किया। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलहुमा और शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नल जिनायत वरदत अला महल मासूमिन, इसलिए क्योंकि जिनायत जो है ये एक मासूम महल पर वारिद हुई है, यानी वो शख्स मुसलमान था जब इसका हाथ काटा गया। व तमत फीही, और इसी के अंदर ये जिनायत पूरी हुई है, यानी महल मासूम के अंदर ही क्योंकि ये मुसलमान था जब इस जख्म की वजह से इसकी मौत हुई है। फयजिबु जमान उन नफसी, तो लिहाजा नफ्स का जमान वाजिब हो गए, यानी पूरी दियत आएगी। कमा इदा लम यतखल्लली रिद्दतु, जैसे कि इर्तेदाद का खलल न आने की सूरत में होता है। अगर एक मुसलमान का हाथ काटा जाए और इस्लाम ही में फिर उसकी मौत आ जाए उस जख्म की वजह से, तो जैसे वहां पर पूरे नफ्स की दियत आती है तो यहां पर भी पूरे नफ्स की दियत आएगी। तो कहते हैं कमा इदा लम यतखल्लली रिद्दतु, जैसे कि जब इर्तेदाद का खलल बीच में न आए। वहां दाली अन्नहु ला मुअतबरा बिकियामिल इस्मति फी हाली बकाइल जिनायती, और ये इसलिए क्योंकि जमान के अंदर ला मुअतबरा बिकियामिल इस्मति कोई एतबार नहीं है इस्मत के कायम होने का, इस्मत के मौजूद होने का। फी हाली बकाइल जिनायती, बकाए जिनायत की हालत में, भाई एक है इब्तिदाए जिनायत और एक है जिनायत का ताम होना, उस वक्त जो है इस्मत होनी चाहिए। दरमियान का जो वक्त है वो बकाए जिनायत का वक्त है और बकाए जिनायत के लिए इस्मत का मौजूद होना जरूरी नहीं। तवज्जो है, इस शख्स का हाथ काटा गया है तो जिस वक्त हाथ काटा गया उस वक्त भी इस्मत होनी चाहिए और जिस वक्त मौत आई है उस वक्त भी इस्मत होनी चाहिए, और दरमियान में जो जमाना है ये बकाए जिनायत का जमाना है, यानी जिसमें वो जुर्म अभी भी बाकी है, और बकाए जिनायत के लिए इस्मत का मौजूद होना जरूरी नहीं। इब्तिदाए जिनायत के वक्त भी इस्मत चाहिए, जब इस जिनायत का हुक्म साबित होगा यानी पूरी जान की दियत आएगी उस वक्त भी इस्मत होनी चाहिए। दरमियान में बकाए जिनायत का जमाना है और बकाए जिनायत के अंदर इस्मत का मौजूद होना जरूरी नहीं, चाहे इस्मत रहे चाहे इस्मत ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दरमियान में अगर यह मुर्तद भी हुआ है लेकिन यह तो बकाए जिनायत का जमाना है तो इसके अंदर इस्मत का बाकी होना जरूरी नहीं है। तवज्जो है, फिर समझें, एक वो वक्त जब इस आदमी का हाथ काटा गया था तो वो था इब्तिदाए जिनायत, और इब्तिदाए जिनायत के वक्त यह शख्स मुसलमान था, इसकी जान मासूम थी, और दरमियान में यह मुर्तद हुआ है और फिर उसके बाद दोबारा मुसलमान हो गया है, चाहे दारुल हर्ब गया है या नहीं गया, दोनों सूरतों में, और उसके बाद फिर वो जख्म फैल गया और मौत आ गई, तो जिस वक्त इब्तिदाए जिनायत थी यानी जिस वक्त यह सबब मौत का पाया जा रहा था उस वक्त इस्मत होनी चाहिए, और जब इस जिनायत का हुक्म साबित होगा यानी जमान आएगा उस वक्त भी इस्मत साबित होनी चाहिए, और दरमियान में तो बकाए जिनायत का जमाना है, बकाए जिनायत के अंदर इस्मत का मौजूद होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई, ये माना है वहां अदा, और ये इस वजह से ले अन्नहु ला मुअतबरा बिकियाम इस्मति, इसलिए क्योंकि कोई एतबार नहीं है इस्मत के मौजूद होने का, फी हाल बका इल जिनायति, जिनायत बाकी रहने की हालत में, व इन नमल मुअतबरु कियामुहा फी हाल इनकाद सबबि व फी हाल सुबूत इल हुक्मी, व इन नमल मुअतबरु, और वो चीज जो मुअतबर है कियामुहा फी हाल इनकाद सबबि, वो इस्मत का मौजूद होना है सबब मुनाकिद होने की हालत में। क्या चीज मुअतबर है? कि जब सबब, ये जो सबब बना मौत का, ये सबब पाए जाते वक्त इस्मत होनी चाहिए, और जब मौत आ रही है उस वक्त इस्मत होनी चाहिए। तो कहते हैं वह इन नमल मुअतबरु, और वो चीज जिसका एतबार है कियामुहा फी हाल इनकाद सबबी, वह इस्मत का मौजूद होना है सबब के मुनाकिद होने की हालत में, यानी जब इस मौत का सबब मुनाकिद हुआ था यानी हाथ काटा गया था उस वक्त इस्मत का मौजूद होना मुअतबर है, और नीज वफी हाल सबूत इल हुक्मी, और इसी तरह हुक्म के साबित होने की हालत में, जिस वक्त इस जिनायत का हुक्म साबित होगा, जिस वक्त इस जिनायत का हुक्म साबित होगा यानी सिरायत होगी और मौत आएगी, उस वक्त इस्मत का होना मुअतबर है। तो कहते हैं वफी हाल सबूत इल हुक्मी, और हुक्म के साबित होने की हालत में इस्मत का होना मुअतबर है। तवज्जो है, फिर जरा तर्जमा देख लीजिए, व इन नमल मुअतबरु कियामुहा फी हाल इनकाद सबबी व फी हाल सबूत इल हुक्मी, और वो चीज जो मुअतबर है वो इस्मत का पाया जाना है सबब मुनाकिद होने की हालत में, व फी हाल सबूत इल हुक्मी, और हुक्म साबित होने की हालत में उस वक्त इस्मत का पाया जाना मुअतबर है। व हालतुल बकाई बिमाजिल मिन ज़ालिका कुल्लिही, व हालतुल बकाई, और बका की जो हालत है यानी बकाए जिनायत की जो हालत है, बिमाजिल, वो जुदा है, वो अलग है, मिन ज़ालिका कुल्लिही, इस सब से जी। वो इस सब से जुदा है। भाई इधर देखिए, एक है इब्तिदाए जिनायत और एक है हुक्म जिनायत, तो इब्तिदाए जिनायत के वक्त भी इस्मत होनी चाहिए और सबूत हुक्म के वक्त भी इस्मत होनी चाहिए, दरमियान में बकाए जिनायत का जमाना है और बकाए जिनायत के जमाने का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि बकाए जिनायत जो है इसके अंदर ना तो सबब पाया जा रहा है और ना हुक्म पाया जा रहा है, ना सबब है और ना हुक्म है, लिहाजा बकाए जिनायत में अगर इस्मत न भी रहे तो कोई हरज नहीं। यह माना है वहालतुल बकाई, और जिनायत के बाकी रहने की जो हालत है, बिमाजिल मिन ज़ालिका कुल्लिही, वो इस सब से जुदा है, यानी बकाए जिनायत के अंदर ना सबब है और ना हुक्म है। भाई वसारा का कियाम मिल्क फी हाली बका इल यमीनी, और ये इसी तरह हो गया जैसे यमीन बाकी रहने की हालत में मिल्कियत का पाया जाना। भाई इधर देखिए, खावंद ने अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो खावंद का ये तलाक को मुअल्लक करना सही है, क्योंकि इस वक्त ये तलाक का मालिक है, खावंद बीवी की तलाक का मालिक है, तो ये तालीक कर सकता है, लिहाजा ये तलाक मुअल्लक हो गई। औरत जब भी इस घर में जाएगी उसको तलाक हो जाएगी, लेकिन उस घर में उस औरत के जाने से पहले ही खावंद ने इसको तलाके बाइन दे दी जी। वो वाली तलाक मुअल्लक है, और उसके बाद खावंद ने एक तलाके बाइन दे दी, और इस औरत ने इद्दत गुजारी और इसने फिर किसी और आदमी से निकाह कर लिया। बेशक इस औरत पर से खावन की मिल्कियत खत्म हो गई है और यह अब किसी और की बीवी बन गई है, लेकिन खावन की वो तलाक अभी भी मुअल्लक है जी। लिहाजा अब दूसरे खावन के पास होते हुए वो औरत अगर उस घर में चली गई जी। तो वो तलाक नाजिल होगी, लेकिन अब तो ये पहले खावन की बीवी ही नहीं है, तो वो तलाक जाया चली जाएगी। लेकिन अगर औरत उस घर में अभी तक नहीं गई और फिर दूसरे खावन ने भी इस औरत को तलाक दे दी या उस खावन का इंतकाल हुआ और औरत ने इद्दत गुजारी और इसने फिर पहले खावन से निकाह कर लिया, तो याद रखो वो तलाक अभी भी मुअल्लक है। लिहाजा ये औरत अगर अब उस घर में गई तो तलाक वाकई हो जाएगी। तो देखो जिस वक्त खावन ने तलाक मुअल्लक की थी उस वक्त भी वो तलाक का मालिक था, और जिस वक्त औरत घर में गई है उस वक्त भी खावन तलाक का मालिक है। दरमियान के अंदर अगरचे खावंद की मिल्कियत नहीं, लेकिन बकाए यमीन के लिए मिल्कियत का होना जरूरी नहीं। इब्तदाई यमीन के वक्त मिल्कियत होनी चाहिए और जिस वक्त हुक्म पाया जाए उस वक्त मिल्कियत होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यह माना है वसारा का कियाम मिल्की, और यह इसी तरह हो गया जैसे कि मिल्कियत का पाया जाना फी हाली बका इल यमीनी, यमीन के बाकी रहने की हालत में। तो जैसे यमीन के बाकी रहने की हालत में मिल्कियत का पाया जाना जरूरी नहीं। इब्तदाई यमीन में मिल्कियत होनी चाहिए और हुक्म के वक्त मिल्कियत होनी चाहिए। बका यमीन के अंदर उस खावंद की मिल्कियत बीवी पर जरूरी नहीं। इसी तरह इब्तदाए जिनायत और हुक्म जिनायत के वक्त वो शख्स जो है मासूम होना चाहिए जी। और बकाए जिनायत की हालत में अगर वो मासूम ना रहा यानी दरमियान में मुर्तद भी हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह माना है वसारा का कियाम मिल की फी हाली बका इल यमीनी, और यह इसी तरह हो गया जैसे कि मिल्कियत मौजूद हो बकाए यमीन की हालत में। बात समझ में आ गई? हल हो गया? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।